यहाँ आप इसे कैसे बंद करेंगे? आप बंद करने के लिए तैयार रहें, फिर जब मैं अपने सिर को इस तरह से आपकी तरफ करूंगा, समझे, मेरा सिर आपकी तरफ घुमाऊंगा, आप भाइयों, हमने इस सभा को आज रात्रि एक साथ इसलिए बुलाया है जानकारी को देने के उद्देश्य से, यह जानने के लिए कैसे उस जीवित परमेश्वर की कलीसिया को चलाएं जो हम विश्वास करते हैं ये इस कलीसिया का भाग होगा। मैं चाहता हूं, पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे संसार भर की यात्रा में जहां तक मैं जानता हूं, यह सबसे आत्मिक स्थानों में से एक स्थान है जहां पर आप परमेश्वर की आत्मा को दूसरे सभी स्थानों से अधिक महसूस कर सकते हैं जिसे मैं जानता हूं। मेरे मन में दूसरे दो स्थान हैं जो हमेशा से रहे थे, लेकिन अब तक हमें नहीं लगता कि हम उस स्थान को देखेंगे। उसमें से एक संगठन के अंदर चला गया है और दूसरा है वो एक तरह से गिर गया है। सो मुझे फोन किया गया था और बताया गया था कि आप सभी एक सभा को चाहते हैं जिसमें मुझसे सवालों को पूछा जाए जो इस कलीसिया में आपके कर्तव्य से संबंधित है, और मैं इसी कारण से आज रात को यहाँ पर हूँ और कलीसिया को क्रम में रखने के लिए या चीजों को बताऊँ जो मैं समझता हूँ कि ये बहुत जरूरी है जिससे इस कलीसिया को जारी रखा जाए। भाइयों, मुझे पक्का है आपको ये एहसास हुआ होगा जैसा कि मैंने इसे एक आत्मिक स्थान होने के बारे में टिप्पणी की है। ये संसार का सबसे बड़ा स्थान नहीं है और ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सबसे अधिक गाना गाया जाता है, बहुत अधिक शोर मचाना होता है या अधिक चिल्लाना या अन्य भाषा में बोलना और इत्यादि, ये ऐसा नहीं है। लेकिन यह तो आत्मा की गुणवत्ता है जो यहाँ इस भवन को चलाती है। और अब तक के लिए मैं भाई नेविल की सराहना करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप भाइयों को जो यहाँ पर हैं, खजांची और डीकन और संडे स्कूल की देखभाल करने वाले और सभी के लिए आपने जो सहायता की इसे इस तरह से बनाए रखने के लिए। यह मेरी एक लंबे समय से प्रार्थना रही थी और इच्छा रही थी जब मैं एक लड़का ही था कि कलीसिया को व्यवस्था में रखते हुए देखूं और कलीसिया को व्यवस्था में रखा जाए। अब जब हमने कलीसिया को समर्पित किया, मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ समय के बाद, मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ तो था, हम कैसे इन चीजों को व्यवस्था में रखें जिस तरह से इसे चलाया जाना चाहिए। और आपने आरंभ किया, यहाँ से जाने के बाद हमारे पास यहाँ सेवक और इत्यादि भाई लोग थे, लेकिन अब भाई नेविल जो हम सब में से युवा है वे हमारे बीच में आए। मैंने सोचा कि ये बेहतर होगा कि भाई नेविल विश्वास में अच्छी तरह से स्थिर हो जाएं, इससे पहले कि मैं ऐसी बातों को आपके सामने रखूं जिसे मैं अभी करने जा रहा हूं। लेकिन अब जब मैं देखता हूं कि वह अभी विश्वास में अच्छी तरह से स्थिर हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि सिद्धांत क्या है और मसीह के लिए एक विश्वास योग्य गवाह के भाग के किरदार को निभाया है और उस बात को पकड़े हुए हैं जिसे हम सच्चाई होने के लिए विश्वास करते हैं, मैं सोचता हूं कि यही वो घड़ी है। ये अच्छा समय होगा कि उसके पास जाकर और आपके बीच यहाँ इस कलीसिया में उन प्राचीनों और इत्यादि के साथ, जिससे कि आप इन व्यवस्थाओं को लें और उन्हें याद रखें जो परमेश्वर के सामने मेरी सबसे अच्छी जानकारी में है, और फिर मैं देखना चाहता हूं कि आप इसे उसी तरह से आगे लेकर जाएं जिसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि किसी को तो यहां पर आगे आना होगा, आपके पास होना है। अब मैं अधिकार को लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूं या इसी तरह से कुछ, लेकिन आप देखते हैं एक मनुष्य या कोई तो दो अधिकार के साथ होता है तो उसे नहीं मालूम कि कैसे जाना है। परमेश्वर ने कभी भी उसकी कलीसिया में दो अधिकारियों को नहीं रखा है, उसने कभी नहीं किया, यह तो एक अधिकार के नीचे होता है। उसने हमेशा हर पीढ़ी में इसी तरह से व्यवहार किया है जैसे हमने वचन में से होते हुए पढ़ा है, वहाँ हमेशा वो एक ही व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है, क्योंकि आपके पास दो मनुष्य होते हैं तो आपके पास दो राय होती है, और इसे एक अंतिम परम सत्य के लिए आना होगा, और मेरा परम सत्य वचन है, वो बाइबल है, और इस कलीसिया का पास्टर होने के नाते मेरा परम सत्य वचन है। और मैं चाहता हूँ, मैं आप लोगों को जानता हूँ, हमारे भाई लोग, आप मुझे परम सत्य की तरह देखते हैं कि जब तक मैं परमेश्वर का अनुकरण करता हूँ, जैसे पौलुस ने कहा है, तुम मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ, और तब मुझे आशा है भाइयों, किसी भी समय जब आप मुझे इस वचन से बाहर पाते हैं तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलें और मुझे बताएं मैं कहां पर गलत हूं। मैं परवाह नहीं करता आप खजांची में से कोई एक हो या आप द्वारपाल हो, जो कुछ भी है आपका कर्तव्य है कि आप मेरे पास आएं मसीह में एक भाई होने के नाते मुझे बताने के लिए कि मैं वचन के अनुसार गलत हूं। यदि कोई सवाल है तो आओ बैठकर और इसे एक साथ मिलकर हल करें। और इसीलिए आप यहां पर हैं। मैं सोचता हूं मेरे लिए आज मुझे यहां बुलाया गया है क्योंकि यहां पर सवाल हैं। जो सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं उन बातों के लिए मैं यहां पर हूं। अब याद रखें भाइयों, मुझे नहीं पता इनमें से किसी भी सवाल के पत्र पर किसी भी नामों का हस्ताक्षर नहीं किया गया है, लेकिन और उन्होंने लिखा है, और मैं नहीं जानता कि उन्हें किसने लिखा है, लेकिन ये वे सवाल हैं जो आपके दिमाग में हैं, और मैं उन्हें अपने सर्वश्रेष्ठ ज्ञान से जवाब देने के लिए यहाँ पर हूँ। और याद रखना, परमेश्वर मेरी ओर देख रहा है यह देखने के लिए कि मैं वचन में बना रहूँ, और मैं आपकी ओर देख रहा हूँ यह देखने के लिए कि देखूँ आपको इस कलीसिया में वचन का पालन करते हुए देखूं, और इसे आत्मिक बनाए रखें, क्योंकि याद रखना शैतान के अंधकार के राज्य की सेना आपके खिलाफ हो जाएगी जब आप प्रभु में बढ़ने लगते हैं। और आपको योद्धा होना ही है, ना कि आप बस अभी अभी के नए योद्धा हैं, अब आप पुराने योद्धा हैं और आपको लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। और शैतान आपके बीच में आएगा इसलिए कि आप एक दूसरे के साथ झगड़ा करें, यदि वो कर सकता है तो उसे बस तुरंत ही भगा दें। आप लोग आपस में भाई हैं और ये तो वो शत्रु है, और हम इस संध्या के उजाले के समय में एक शिष्टता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर हैं कि जब संसार घोर अंधकार में है और सारी कलीसिया के राज्य कलीसिया की परिषद में जा रहे हैं, और बहुत ही जल्द वे यहाँ इस दरवाजे पर एक चिन्ह को लगाने की कोशिश करेंगे बंद, और फिर हमें अन्य स्थानों पर मिलना होगा, क्योंकि वे निश्चित रूप से यदि हम पशु की शाप को नहीं लेते हैं तो वो इन कलीसिया को किसी दिन बंद कर देंगे, और हम परमेश्वर के प्रति सच्चे बने रहने पर भरोसा रखते हैं जब तक मृत्यु हमें आजाद नहीं करती है, और यही हम करने का अभिप्राय रखते हैं। अब सीधे, और मैं पूछता हूँ कि यदि कभी ऐसा समय हो कि इनमें से कोई भी बात सवालों के घेरे में आ जाती है, तो ऐसा है कि इस टेप को इस कलीसिया के सदस्य के सामने चला सकते हैं। देखिए, आपकी सभाओं में या सभा से पहले, बस इससे पहले कि सभा आरंभ हो, इस टेप को चालू करें और इसे चलाएं, और होने पाए यहाँ की सभा के लोग यह समझ जाएं कि ये मनुष्य परमेश्वर के प्रति कार्यबद्ध हैं, जैसे उनकी इस कलीसिया में शपथ होती है, जिससे कि सिद्धांत को पालन करने में सहायता करें। हो सकता है आप उनसे असहमत हों, और यदि मैं आपको आपकी इच्छा से ऐसे ही कलीसिया चलाने दूं, तब मैं आपसे असहमत होऊंगा। आपके पास कहीं न कहीं तो मूल स्तोत्र होना है, जहां एक अंतिम मुख्य को होना होगा, और मैं जो सबसे अच्छा जानता हूं, मैं इसे पवित्र आत्मा की अधीनता में दे रहा हूं। वो ही मेरा एक अंतिम बने, और ये टेप को आपके लिए इन सवालों पर अंतिम बने। अब पहला सवाल है, कलीसिया किस तरह से आर्थिक सहायता को मांगने की दशा में कार्य करे, भोजन और कपड़ों के लिए क्या नियम है, कलीसिया को क्या करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि कलीसिया अपने स्वयं के लोगों के लिए जिम्मेदार है, हमारे सदस्यों के लिए जो यहाँ कलीसिया पर हैं, हम पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, जहाँ तक हमें उन्हें आपूर्ति करने की आवश्यकता है। हम अपने स्वयं के लोगों के लिए जिम्मेदार हैं, जो यहाँ स्थिर हैं, जो हमेशा भवन में आने वाले सदस्य हैं, जो यहाँ आकर और हमारे साथ आराधना करते हैं। हम उनके लिए कार्यबद्ध हैं, हमारी बहन और भाई होने के नाते, जिन्होंने इस सभा में एकत्र होते हुए हमारे सदस्य होने को साबित किया है। अब हम महसूस करते हैं कि भोजन के बिना, कपड़े के बिना आज रात लाखों लोग हैं, और हम उनमें से सारे झुंड की सहायता करने में काबिल होना पसंद करेंगे, हर एक चीज जो हम कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम सारे संसार की सहायता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्वयं के लोगों से बंधे हुए हैं। और इसमें मैं सोचता हूं, और फिर यदि हमारे पास कुछ भी बचता है जिसे आप उन लोगों के लिए योगदान करना चाहते हैं जो इस कलीसिया के सदस्य नहीं है, कुछ ऐसा जो आप उन्हें देना चाहते हैं, इसे डीकन के बोर्ड के बीच में रखना चाहिए। डीकन ही वो है जिसे इस प्रतिरोध को, या मेरा मतलब इस समस्या को पूरा करना है, क्योंकि बाइबल में जब भोजन और कपड़ों के बारे में विवाद सामने आया और इत्यादि प्रेरितों के काम में उन्होंने इसके बारे में प्रेरितों को बुलाया और उन्होंने कहा जाकर अपने आप में देखो जो ईमानदार कहलाने के सात पुरुष हो और पवित्र आत्मा से भरे हों कि वे इन चीजों में ध्यान दे सकें क्योंकि हम अपने आप को निरंतर परमेश्वर के वचन और प्रार्थना में देंगे। और ये पास्टर का कर्तव्य नहीं है कि भोजन और इत्यादि के लिए देखे, यह डीकन्स के द्वारा होना चाहिए। इसे खजांची को नहीं करना है, यह डीकन्स का कार्यस्थल है कि इसे करे। और फिर ऐसा होना चाहिए, याद रखें बाइबल में वे अपने स्वयं के लोगों के लिए योगदान दे रहे थे, वे यूनानी और वे यहूदी, जहाँ पर यह विवाद सामने आने लगा कि एक को दूसरे से थोड़ा अधिक मिल रहा था, लेकिन यह तो वे लोग थे जिन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया था और उसकी सहायता के लिए इसे कलीसिया में दे रहे थे और फिर उन्हें बराबर लोगों के बीच में बांटने के लिए। और वहाँ थोड़ा विवाद सामने आया और जहाँ हमें हमारा पहला डिकन मिला, और ऐसा करना यह उनके कर्तव्यों में से एक कर्तव्य है। मुझे लगता है कि हमारे अपने लोग होने के नाते हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और इससे किसी को भी कोई शिकायत हो तो डीकन बोर्ड के प्रधान के पास जाए और फिर इसे डीकन बोर्ड के द्वारा देखना चाहिए और देखे कि वे इसके बारे में क्या कर पाते हैं और उन सभी चीजों के बारे में जो कपड़े और भोजन और आर्थिक सहायता या जो कुछ भी है उन्हें डीकन्स के जरिए से आना चाहिए। उसके बाद डीकन्स जब वे तय करते हैं कि वे इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं तो वे इसे तब खजांची के सामने रखना चाहिए ताकि यह देखे कि खजांची इस समय पर इस फलाना वित्तीय राशि को भुगतान करने में सक्षम है या इन कपड़ों को खरीदने के लिए या जिस किसी चीज के लिए भी यह है। लेकिन डीकन बोर्ड को ही उस बात को देखना चाहिए और इस बात के लिए खजांची या पास्टर के पास नहीं जाना है, यह कुल मिलाकर डीकन्स का ही काम है। अब उसके बाद सवाल संख्या दो, क्या खुले रूप से पुलपिट से यह कहना उचित है कि एक मीटिंग में सभा से पहले अन्य भाषा में बोलना और अनुवाद किया जाना चाहिए? यह कागज इस पर्ची पर दूसरा सवाल है जो मेरे पास है, जो कि छोटा सा कार्ड है। अब यह यहाँ पास्टर से संबंधित होगा, देखो, क्योंकि आखिरकार वो आत्मिक भाग पर वह उसका प्रमुख है। डीकन कलीसिया में पुलिसकर्मी होते हैं जो इन व्यवस्था को बनाए रखते हैं और इन बातों का ध्यान रखते हैं और जरूरतमंदों को भोजन देते हैं और इत्यादि। खजांची वित्तीय बातों पर और भवन के ऊपर है, यही है जिन बातों को उन्हें देखना होता है, लेकिन पास्टर आत्मिक भाग के ऊपर देखरेख करने वाला होता है। और यह बात भाई नेविल आपके लिए है। और वहाँ कुछ समय पहले जब कलीसिया में व्यवस्था को रखा जाता था, मैं अन्य जुबान में बोलना और अनुवाद करने में विश्वास करता हूँ और वे सारे बेहतरीन आत्मिक दान हैं जो परमेश्वर ने कलीसिया में होने के लिए ठहराया है। लेकिन हम उस दिन में रह रहे हैं जैसे बाइबल के समय में था, जहाँ वे कलीसियाएं। अब आप पौलुस को देखें, उसने इफिसियस में कलीसिया की स्थापना की, इफिसियो कलीसिया, जो एक अच्छी तरह से स्थापित की हुई कलीसिया थी। क्या आपने ध्यान दिया? हम विश्वास करते हैं कि पौलुस, और उसने स्वयं के लिए ऐसा कहा था कि उसने बहुत सारे अन्य अन्य जुबान के साथ बोला, और हम जानते हैं कि उसके पास अन्य जुबान के दान थे, ना ही वे जुबानें जो उसने सीखी थी, लेकिन वे जो आत्मिक रूप से उसे दी गई थी, जैसे वे वहाँ इस कुरिन्थियों में जिस तरह से बोलते थे। और समय को बचाने के लिए मैं अब बाइबल को नहीं खोलूंगा और आपके लिए इसे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इससे आज रात हमें यहाँ बहुत लंबे समय तक रुकना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और अभी, लेकिन सिर्फ इतना ही है कि आप इसे देख सके। अब पौलुस को इफिसियो कलीसिया या रोमियो कलीसिया या उन अन्य कलीसियाओं में किसी में भी अन्य जुबान में कभी नहीं बोलना पड़ा था उनके आत्मिक दानों के बारे में, इसके बारे में कि उन्हें कैसे व्यवस्था में रखा जाए, लेकिन उसे निरंतर कुरिन्थियों के साथ इस बारे में बात करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने इसे हर समय एक मुद्दा बना लिया था। और पौलुस ने कहा जब वह उनके बीच आता, यदि उन्हें पता चलता था कि कोई एक अन्य जुबान में बोलता है और कोई एक स्तुति के गीत गाता है और वह उनके सारे अच्छे दानों और इस तरह की चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता था। और यदि आप पहले अध्याय या उन दोनों कुरिन्थियों में ध्यान दें, तो पौलुस उन्हें बता रहा था स्थायी रूप से कि वे मसीह में क्या थे, कैसे वे स्थानीय रूप में मसीह में थे। उसके उन्हें बताने के बाद तब एक पिता की तरह उसने उन पर चाबुक लगाना आरंभ किया और कहा मैं तुम्हारे बीच में झगड़े को सुनता हूँ और सुनता हूँ कि तुम प्रभु की मेज पर मदहोश हो जाते हो। उसने उन्हें मसीहत से हटाने दिया और आप भाइयों ऐसा न करें मसीहत से हटाना, लेकिन जिस तरह से वे खुद से परमेश्वर के भवन में व्यवहार कर रहे थे यही है जो यहाँ पर कहा गया। अब मैं यह कहूँगा जैसे कि पुराने समय के पौलुस ने कहा था कि जब आप एक साथ आते हैं यदि कोई अन्य जुबान बोलता है तो दूसरे एक को अनुवाद करना है, कोई अनुवादक नहीं है तो आप शांत रहें, लेकिन यदि कोई अनुवादक है। अब मैंने यहाँ कलीसिया पर ध्यान दिया है और मैंने देखा है कि आप बढ़ चुके हैं और मैंने आपके बीच में बहुत से आत्मिक दानों को कार्य करते हुए देखा है। साफ साफ कहूँ एक मुझे भाई नेविल के पास एक वचन के साथ आना था जो प्रभु से होना था ताकि उसका सुधार करूँ किसी चीज पर जो वो कर रहा था। और यदि प्रभु के पास पवित्र आत्मा ने मुझे झुंड का प्रधान बनाया है तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं। और मैं भाई नेविल का बहुत ही आभारी हूं, उन्होंने सच्चाई का ख्याल रखा। मैं केवल इसे कह सकता हूं जैसे वो मुझे बताता है। अब इस पर जैसा कि मैंने ध्यान दिया है आपकी कलीसिया बढ़ रही है और इसे देखा है और इस कलीसिया में यहाँ जिस तरह से ये हमारे पास पहले था और इसी तरह से हम इसे फिर से चाहते हैं। अब यदि आप नहीं देखते हैं जब बालक जो पहली बार बात करता है वो बात करने की कोशिश करता है, जब वो बात नहीं कर सकता है समझे, वह बहुत से मुंह में बुलबुले बनाता है और शोर करता है और इत्यादि, लेकिन वो सोचता है कि वह बस वह उस समय पर प्रचारक से भी ज्यादा बोल सकता है। तो वैसे ही हम पाते हैं कि न केवल स्वाभाविक जीवन में लेकिन हम आत्मिक जीवन में भी ऐसा पाते हैं। ये एक छोटा सा बालक है और यदि आप उस बालक को सुधारने की कोशिश करते हैं और उसे जरा सा थप्पड़ मारते हैं क्योंकि वह मुंह से लार गिरा रहा होता है और बात करने की कोशिश कर रहा होता है तो आप बच्चे को बिगाड़ देंगे देखो और आप उसे चोट पहुंचाएंगे। और तो सबसे अच्छा ये है कि बालक को थोड़ा सा बढ़ने दें जब तक वो वास्तव में उसके शब्दों को सही सही नहीं बोल सकता है और फिर उसे बताएं कि कब बोलना है, ना ही जब पापा बात कर रहे हो या मम्मी बात कर रही हो, लेकिन जब उचित समय हो तो उससे बोलने दे तो उसे बोलना है। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? अब जब बात करने का समय आए तो उसे बात करने दो। अब यदि मेरे जीवन में ऐसी कोई बात होती थी जो कांटे की नाई चुभती थी बाहर की सभा में जब मैं बोल रहा होता तो उस वक्त कोई तो उठता और फिर वो अन्य जुबान में संदेश को देता और आत्मा को रोकता है। मैं अभी न्यूयॉर्क और अलग अलग स्थानों पर एक सभा करके आया जहां सेवक लोग हर समय पर इन बातों को होने देते हैं और ये कुछ और नहीं लेकिन गड़बड़ी है। देखो जब परमेश्वर विचार की किसी एक पंक्ति में काम कर रहा होता है तो वो करेगा यही होगा। वो तो फिर उसके खुद के ही उद्देश्य को हराता है। यदि वो आपके लिए कुछ विचारों को लाने का प्रयास कर रहा है सभा के लोगों के लिए या वेदी की पुकार को करने के लिए और कुछ तो बीच में आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि समझो हम टेबल पर बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं और हम प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं और वो जूनियर छोटा बच्चा टेबल के आसपास तुरंत ही दौड़ने लगता है। हम जो कर रहे होते हैं उस बात से हम सभी का ध्यान हट जाता है और वो चिल्लाता है चीखता है पापा मम्मी ओह ओह मैंने अभी सीधे सीधे गोल करके उस टीम को हरा दिया और हम सब ऐसा कर रहे थे वैसा और इत्यादि। और ये तब होता है जब हम ठीक एक वास्तविक उस पवित्र विषय पर आगे बढ़ रहे होते हैं। अब वो खेल में जीत करके आता है अच्छी बात है, बेसबॉल गेम में यह सब ठीक है, लेकिन वो व्यवस्था से बाहर है जब वो इस संदेश को रोक देता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके समय आने तक उसको रुकना है और उसके बाद हमें पूछना है कि उसने बेसबॉल के खेल में क्या किया। अब ये बस वही चीज है जो हमें आज दानों के साथ समझना है। यही वो कारण है कि परमेश्वर लोगों के साथ बहुत सारे आत्मिक दानों पर भरोसा नहीं कर सकता। वे नहीं जानते कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। यही है जो आज की समस्या है। इसका कारण है कि हमारे पास इतना नहीं होता है जितना हम करते हैं और हम पाते हैं कि आत्मिक दानों की वहाँ बहुत सी नकल होती है, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता कि हमारे कलीसिया में ऐसा होता है। मैं इसके लिए धन्यवादित हूँ। मैं विश्वास नहीं करता कि यह कोई भी एक नकल है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे पास सच्चे दान है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उन दानों को कैसे नियंत्रित किया जाए। और फिर आप जब कुछ अच्छा करने जा रहे होते हैं वैसे ही जैसे आप एक मालिक के लिए काम कर रहे थे और आप अपने काम को पहले ही दिन आरंभ कर देते हैं और मालिक से आदेशों को लेने की इच्छा रखते हैं, तब आपके मालिक को आप पर भरोसा हो जाता है और तो वो हर समय आपको एक ऊपर के कार्यालय पद पर उठाता रहेगा। अब मुझे विश्वास है कि समय ने ब्रैनम टैबरनेकल को प्रभावित किया है यह जानने के लिए कि उन दानों को लें जो परमेश्वर हमें देता है, जिससे परमेश्वर हम पर किसी चीज के साथ भरोसा कर सकता है, तब उससे भी बढ़कर वो हमें देता है जो हमारे पास है। लेकिन हम साथ साथ नहीं जा सकते और आप एक मनुष्य को देखते हैं जिसे हमेशा ही बताना पड़ता है और इत्यादि। और याद रखें, भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ता के अधीन होती है। वचन कहता है जब आप किसी ऐसे पुरुष को देखते हैं जिसे आपको सुधार करना है या एक स्त्री को और उस व्यक्ति को जो व्यवस्था से बाहर होता है और फिर आप उसे वचन के अनुसार सत्य को बताते हैं तो ये दर्शाता है कि जो आत्मा उन पर है वो परमेश्वर का नहीं है। क्योंकि बाइबल ने कहा भविष्यवक्ताओं की आत्मा या भविष्यवाणी करना या प्रचार करना अन्य जबान में बोलना या जो भी है यही गवाही देते हैं कारण अन्य जबान का अनुवाद होना भविष्यवाणी है। सो ये भविष्यवक्ता के अधीन है और वचन भविष्यवक्ता है। सो हम देखते हैं कि यह व्यवस्था से बाहर है एक पुरुष या एक महिला का बीच में उठकर संदेश को देना। इससे फर्क नहीं पड़ता कितना भी इसे करना चाहे, जब प्रचारक पुलपिट में है उन्हें नहीं बोलना है। अब मैं ब्रैनम टैबरनेकल के लिए यह सुझाव देता हूँ कि हमारे दान जिसे हम पाते हैं और हमारे यहाँ कुछ बहुत ही अच्छे दान पाए हुए लोग हैं। अब उन दानों में से हर एक के पास उनकी अपनी सेवकाई होती है। वे दान हैं वैसे ही जैसे प्रचार करना एक दान है, जैसे एक चंगाई एक दान है, जैसे अन्य चीजें दान हैं, ये दान हैं। वे उनकी स्वयं की सेवकाइयां हैं और हर एक व्यक्ति को उसके स्वयं की सेवकाई पर रुके रहने का आदेश है। इसलिए ब्रैनम टैबरनेकल को इसी तरह से संचालित किया जाना चाहिए और उस दिन में विशेष रूप से इस दिन में जब हमारे पास बहुत कुछ होना था। मैं इसे कहना नहीं चाहता लेकिन बहुत से ढोंगी विश्वासी, हम ढोंगी विश्वास को नहीं चाहते हैं। कोई भी मनुष्य, कोई भी ईमानदार मनुष्य एक ढोंगी विश्वास को नहीं चाहता है। हम यदि हम नहीं होते हैं, हमारे पास वास्तविक नहीं हो सकता है। ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं होने दें, हम तब तक रुके रहें जब तक कि हमें वास्तविक नहीं मिल जाता। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग इससे सहमत होंगे, हम कुछ भी ढोंगी विश्वास को नहीं चाहते हैं भाइयों। हम कुछ भी ढोंगी विश्वास पर आरंभ नहीं कर सकते हैं और हमें इस संसार को छोड़कर जाना है। हमारे पास वो होना है जो वास्तविक है और जो सच्चा है। यदि हमें यह नहीं मिला तो जब तक हम इसे प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक रुके रहें और तब इसके बारे में कुछ कहें, समझे। अब मैं कहूंगा सारे पुरुष और महिलाएं जो अन्य जुबान और भविष्यवाणी में बोलते हैं और संदेशों को देना, और मैं आपके साथ उन लोगों पर विश्वास करता हूं जो सच्चे हैं। अब बाइबल ने कहा सारी चीजों की पुष्टि करो, जो कुछ भी अच्छा है उसे पकड़े रहो, क्योंकि मैं लड़खड़ाते होठों से और अन्य जुबानों से मैं इन लोगों से बात करूंगा। यही वो विश्राम है जिसे मैंने कहा जिसमें उन्हें प्रवेश करना चाहिए, यशायाह की किताब में। अब मैं इसके लिए ऐसा सुझाव दूंगा जिससे भवन में एक समय पर केवल एक ही दान के द्वारा सेवकाई की जाए, क्योंकि यह हमें फिर से सीधे वापस व्यवस्था में लेकर आता है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि एक बोल रहा होता है भविष्यवक्ता का आत्मा भविष्यवक्ता के अधीनता में रहे, क्या आप समझ रहे हैं। अब वे जो मसीह की देह की एक सेवकाई है, और अब यह कहा गया है अब ऐसा किया जाना चाहिए, वे जो मसीह के देह के लिए एक सेवकाई है उनकी सेवकाई होने तक रुके रहें, क्योंकि यह कलीसिया के लिए मसीह की ओर से एक सेवकाई है। लेकिन आप एक ही समय में सारे सेवकाई नहीं कर सकते हैं, वहाँ एक समय में एक ही को होना है। ब्रैनम टैबरनेकल इसी तरह से होगा, वे जो अन्य जुबान के साथ बोलते हैं और वे जो अन्य जुबान का अनुवाद करते हैं और जिनके पास भविष्यवाणी है जो कलीसिया के लिए किया जाना है, वे उन लोगों के बीच में जल्दी आएं। वे सभा के आरंभ होने से पहले आएं, उन्हें एक ठहराए हुए कमरे में इकट्ठा होने दें और प्रभु की सेवकाई के लिए रुके रहें। जैसे पास्टर को खुद करना है, इससे पहले वो सभा के लोगों के बीच आए, उसे अवश्य ही बाइबल को लेना है, अपने कमरे की शांति में जाकर आत्मा में अध्ययन करना है और अभिषेकित होना है, इससे पहले सभा के लोगों के सामने बोलने के लिए आए। यदि वो नहीं करता है तो वो गड़बड़ी में आ जाएगा जब वो वहाँ बाहर आता है। हर एक पुरुष और हर एक स्त्री एक आत्मिक दान के साथ प्रभु के सामने आए, और ऐसा ही है। पास्टर के पास एक ही सेवकाई होती है, वह एक भविष्यवक्ता है। अंग्रेजी शब्द है एक प्रचारक का अर्थ है एक भविष्यवक्ता, जो वचन का एक आगे की बातों का बताने वाला है। वे जिन लोगों के पास सेवकाइयां हैं जिसे किसी और का भाग होना है, जैसे कि एक को अन्य जुबान के साथ बोलने के लिए और दूसरे को अनुवाद करने के लिए, उन्हें अपने सेवकाई पर एक साथ रुके रहना है। वे एक निजी तैयारी में बने नहीं रह सकते हैं और अन्य भाषा में बात करें और फिर आकर दूसरे एक को जो अनुवाद करने वाला है उसको बताएं कि उसने क्या कहा, क्योंकि उसके पास दोनों अन्य जुबान और अनुवाद होता है। देखा, अब यदि उसके पास ऐसा है बहुत अच्छा है, हम इसे उसी तरह से ग्रहण करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कलीसिया इन दानों के द्वारा लाभ उठाए जो हमारे कलीसिया में हैं। परमेश्वर ने उन्हें हमारे पास भेजा है और ये हम चाहते हैं इन आत्मिक दानों के द्वारा लाभ उठाएं जो हमारी कलीसिया में है। इसलिए जो मनुष्य अन्य भाषा में बोलता है और दूसरा एक अनुवाद करता है और जो भविष्यवाणी करता है, इससे पहले कलीसिया आरंभ हो उन्हें एक साथ आने दो। वे आपस में एक साथ कमरे में मिले, कलीसिया के लिए प्रभु के सेवकाई पर रुके रहें। क्या ये समझा? और फिर इस तरह से यदि भाई नेविल कहते हैं ठीक है अब मुझे क्षमा करें, मुझे ये कहने दें, यदि भाई कॉलिंस अन्य भाषा में बोलते हैं और भाई हिकर्सन अनुवाद को करते हैं तो उनके पास कलीसिया के लिए एक साथ सेवकाई है। अब यह भाई नेविल की सेवकाई नहीं है, यह कलीसिया के लिए आपकी सेवकाई है। मैं इसे उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। तब आप भाइयों को वैसे ही परमेश्वर के भवन में अपनी सेवकाई को अपने स्थान में प्राप्त करने में रुचि लेनी चाहिए जैसे पास्टर को उसकी सेवकाई को पाने में रुचि है, क्योंकि यह बस उतना ही आवश्यक है जितना आप इसे करते हैं। लेकिन आप इसे अपने कमरे में इसे निजी तरीके से नहीं कर सकते हैं। क्या आप अन्य जुबान में बोलेंगे और आप अनुवाद करेंगे? आपको एक साथ आना होगा। आप कलीसिया में एक साथ आए, अपने आप को एक कमरे में बंद करें, क्योंकि आपके पास एक निजी सेवकाई है। यह एक खुले तौर पर सेवकाई नहीं है, यह एक कलीसिया की सहायता करने के लिए है। देखा, यह कलीसिया की सहायता करने के लिए कुछ तो है, लेकिन इसे मुख्य सभा के लोगों में नहीं किया जाना है। केवल जिस तरह से मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ इसे किया जाना है। देखा, फिर जो कुछ भी भाई कॉलिंस बोलते हैं और भाई हिकर्सन अनुवाद करते हैं उदाहरण के लिए, तो कोई तो भाई इसे लिख कर रखे कि यह क्या है। और फिर यदि वो आ रहा है, अब हम सभी जानते हैं कि प्रभु आ रहा है, हम इससे अवगत हैं। और यदि भाई नेविल हर रात को उठकर और कहते हैं देखो प्रभु आ रहा है, देखो प्रभु आ रहा है, यह सब ठीक बात है देखो, लेकिन वो उस वक्त इसे कह रहा है पास्टर जब मंच पर है, क्योंकि उसके पास इस बात के लिए वचन है। और यदि वह एक पास्टर है कलीसिया के लिए नबी, मेरा मतलब यह पास्टर, उसे प्रभु के वचन का अध्ययन करना है और आपको बताना है कि प्रभु के वचन में जो लिखा हुआ है कि प्रभु के आगमन के बारे में क्या है, और आपको इसके द्वारा चेतावनी दी गई है। एक सेवकाई अन्यथा कलीसिया के लिए जिससे कलीसिया का कोई संबंध नहीं है, वो अन्य भाषा हो, अन्य भाषा का अनुवाद हो जो कि भविष्यवाणी है, या एक नबी का बोलना हो, ऐसा कुछ भी जो वचन में नहीं लिखा गया है। वचन में जो लिखा है वो इसे लाने के लिए होता है, लेकिन जो वचन में नहीं लिखा है ये वही है जो आप उसे बताना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भाई व्हीलर से कहो, यहोवा यो कहता है कल उसके रेत के खड्डे में उसके पास नहीं जाना क्योंकि वहाँ एक ट्रक पलट जाएगा, या ऐसा ही कुछ, और इसे होना ही है, और आपने इसे बोल दिया है और इसने इसका अनुवाद किया है। और फिर आपके सेवकाई समाप्त होने के बाद इसे मंच पर रख दें, फिर रात में कलीसिया स्तुति गीत गाना आरंभ करने के बाद और इत्यादि। यदि उसके बाद आपकी सेवकाई समाप्त हो जाती है, उनको उन भविष्यवाणी के साथ आगे आने दो जो भविष्यवाणी उन्हें दी गई है। और मैं नहीं सोचता कि हमारे पास ऐसा है, या यदि आप ऐसा करते हैं तो इसे वहाँ रखें। जब ये लोग आपस में मिलते हैं वे पहले आए जिसके पास समझ हो, क्योंकि आप देखते हैं यदि एक अन्य भाषा में बोलता है और वचन के अनुसार दूसरा एक अनुवाद करता है तो इसे तब तक ग्रहण नहीं किया जा सकता है जब तक कि इसे दो या तीन गवाह के द्वारा गवाही नहीं दी जाए, या दो या तीन से अधिक गवाह। देखो, इसके लिए गवाह को होना है जिससे कि वे इसे प्रभु के वचन होने का विश्वास करें, क्योंकि और कभी कभी इन छोटी छोटी सेवकाइयों में किसी भी अन्य सेवकाई के जैसे आपको ऐसी आत्माएं मिलती हैं जो गलत होती हैं। देखें, वे वहाँ पर मंडराएंगी और हम उसे नहीं चाहते हैं। नहीं, हम चाहते हैं कि ये सेवकाइयां उजागर होने के लिए तैयार हों, यदि उन्हें उजागर होना है, क्योंकि परमेश्वर का कुछ भी आप इसे उजागर होने के बारे में चिंता नहीं करें। मेरा मतलब है इसे परीक्षा में खड़ा होना है, क्या यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। पास्टर की तरह यदि कोई उसे वचन पर चुनौती देता है तो उसे इसके बारे में पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, वह बस जानता है कि वास्तव में वो क्या बोल रहा है। यहाँ पर आ जाए, देखा, और इन अन्य सेवकाई के लिए उसी तरह से है, उसी तरह से होना है। अब यदि कोई अन्य जबानों में बोलता है और एक संदेश को देता है, अब कुछ लोग अन्य जबान में बोलते हैं जब ये बस खुद की उन्नति करने के लिए करते हैं। बाइबल ने कहा उनके पास बस एक अच्छा समय होता है, वे अन्य जबान में बोलें उन्हें लगता है तो, और हाँ वे अन्य जबान में बोलते हैं तो वे वास्तव में अन्य जबान में बोल रहे होते हैं और ये आत्मा इसे कर रहा होता है। लेकिन यदि वो सभा के लोगों के बीच में वहाँ बैठा हुआ है, अन्य भाषा में बोल रहा है, बस खुद को उन्नति करने के लिए कर रहा है, तब ये कलीसिया के लिए कोई लाभदायक बात नहीं है। वो पुरुष खुद की उन्नति करता है या वो स्त्री या जो भी इसे कर रहा होता है, समझे। अन्य जुबान में बोलना परमेश्वर का एक दान है जो उन्नति के लिए है। जैसे पौलुस वचन में कहता है कि यह कलीसिया की उन्नति करना है, तो इसे सीधे परमेश्वर से कलीसिया के लिए संदेश होना था, इससे बाहर जो बाइबल में यहाँ लिखा है, समझे। ये कुछ ऐसा है, यदि आप मुझसे पूछ सकते हैं भाई ब्रैनम मुझे कैसे बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं आपको तुरंत ही बता सकता हूँ। आपको अन्य जुबान में बोलकर और मुझे ये नहीं बताना है ये ठीक यहाँ बाइबल में लिखा है कि इसके बारे में क्या करना है। देखा, मुझे ऐसा नहीं करना है, आपको उस पर कोई सवाल नहीं पूछना है। और कोई तो अन्य जबान में बोले और आपको बताए, देखो ये पहले से लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप कहते हैं भाई ब्रैनम मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ एक निर्णय को लेना है जो मुझे इसे करना होगा कि क्या मुझे इस कलीसिया को आना चाहिए या किसी अन्य कलीसिया में जाना चाहिए या ऐसा ही कुछ, क्या मुझे ऐसा या वैसा करना चाहिए, अब इसे परमेश्वर की ओर से आना है। देखो परमेश्वर को हमें यह बताना है, लेकिन इसे एक और सेवकाई के द्वारा आना है, क्योंकि वचन यह नहीं कहता कि ऑर्मन नेविल ब्रैनम टैबरनेकल को छोड़ दो और फोर्ट वेन गॉस्पेल टैबरनेकल में जाओ। देखिए ये यहाँ वचन में ऐसा नहीं कहता है, देखो तो ये दान इसी के लिए है। जैसा कि कोई व्यक्ति यहाँ आकर कहता है क्या आप दैविक चंगाई में विश्वास करते हैं, हम प्रचार करते हैं, हम ये विश्वास करते हैं, हम अभिषेक तेल में विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति कहता है कि वो इसे पकड़ नहीं सकता है, क्या बात है, तब ये परमेश्वर को लेता है अन्य भाषा के जरिए से, अनुवाद को, भविष्यवाणी के द्वारा या किसी तरह से उस व्यक्ति के जीवन के अंदर जाकर और उस चीज को बाहर निकालता है जो उसने किया है और उसे इसके बारे में बताता है। ये ऐसी सेवकाई है जो पास्टर से संबंधित नहीं है, यह उन सेवकाई करने वाले दानों से संबंधित है, लेकिन उन्हें वहाँ बाहर सभा के लोगों में नहीं किया जाना है। देखा, अब पौलुस को कभी भी कुछ भी इसके बारे में इफिसियो कलीसिया में नहीं बताना पड़ा था, वे व्यवस्था में थे, वो रोमी कलीसिया या न ही उन अन्य कलीसिया में से किसी को, केवल कुरिन्थियों की कलीसिया, और वे कभी भी खुद से नहीं कर सके। अब पौलुस अन्य जुबान बोलने में विश्वास करता था, उसने इफिसियो कलीसिया में अन्य भाषा में बात की थी जैसा कि उसने उसी तरह कुरिन्थियों की कलीसिया में किया था। देखो, लेकिन वह इफिसियो से बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, उन बातों से भी बड़ी जो बस अन्य जुबान में बोलना है या अन्य भाषा का अनुवाद करना है। अब यदि कोई ऐसा संदेश को लिखता है जो अन्य जुबान में दिया गया है या भविष्यवाणी में दिया गया है और मंच पर रखा गया है, तो सभा आरंभ होने से पहले पास्टर के द्वारा इसे पढ़ा जाना चाहिए, जो यहोवा यह कहता वाला वचन है, इन लोगों से बोला गया और अनुवाद किया गया है। और यदि यह बात बिल्कुल ठीक उसी तरह से पूरी होती है जिस तरह से अनुवाद में कहा गया है, तो हमें अपने हाथों को उठाकर और हमारे बीच परमेश्वर की आत्मा के लिए धन्यवाद देना है। यदि ये पूरा नहीं होता है तो उस दुष्ट आत्मा को आपसे बाहर निकलने तक इसे फिर से कभी न करें। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच्चा होता है। तब आप बढ़ चुके हैं पुरुषों की तरह कार्य करने के लिए, ना ही बच्चों की तरह गो गो गो। आपके पास किसी चीज का कुछ तो मतलब होना है, अब कलीसिया को होना है, जैसे कि व्यवस्था में आ रही है, इस व्यवस्था पर आ जाएं। यदि किसी एक ने भविष्यवाणी की है, यदि कोई आपके बीच आता है जो अनपढ़ है और आप अन्य भाषा में बोलते हैं, तो आप उसके लिए एक जंगली व्यक्ति होंगे, वो नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। देखा, और वास्तव में इस दिन पर जहाँ इस बात के बारे में बहुत ही गड़बड़ी की स्थिति है, यह एक ठोकर का कारण बन जाती है। लेकिन एक अन्य भाषा में बोलने दो और दूसरा अनुवाद करे और संदेश को दे और उसे ठीक यहाँ मंच पर पढ़ा जाए कि क्या बात जगह लेने जा रही है, और फिर इसे घटित होने दें, आप देखें कि क्या होता है। उन्हें बताएं कि कल एक निश्चित समय पर या अगले सप्ताह एक निश्चित समय पर यह एक निश्चित बात होगी, फिर वहाँ बैठे हुए उन अविश्वासियों को इसे सुनने दें और वे देखें कि ऐसा घटित होने से पहले ही इसे बताया गया है, तब उन्हें पता चलेगा कि आपके बीच में किस प्रकार का आत्मा है। यह परमेश्वर का आत्मा होगा, यही है जो पौलुस ने कहा। तब यदि कोई एक भविष्यवाणी कर सकता है और गुप्त बातों को प्रकट कर सकता है, तो सभा मुंह के बल गिरकर या अविश्वासी और कहेगा परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, देखा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब हम नहीं चाहते, जब हम एक बालक थे, पौलुस ने कहा मैंने एक बालक की तरह व्यवहार किया, उसने कुरिन्थियों से कहा मैं एक बालक की तरह बोला, उसके पास बालकों का संबंध था, लेकिन जब मैं सियाना हो गया तो मैं बचकानी चीजों को निकाल देता हूँ। अब मैं आप सभी को बता रहा हूँ, देखो अब कुछ वर्ष पहले आप इन दानों के साथ बालक थे, यहाँ और वहाँ खेल रहे थे, लेकिन अब आप एक लंबे समय से स्कूल में आ रहे हैं, यह पुरुष होने का समय है, इसका उपयोग केवल खेलने के लिए न करें। ये दान वे पवित्र हैं, वे परमेश्वर के हैं, और आप उनके साथ नहीं खेले, आइए उन्हें परमेश्वर को इस्तेमाल करने दें, यही आपकी सेवकाई होना चाहिए। इसी तरह से ब्रैनम टैबरनेकल को सेवा में रखना है। और यदि यह सवाल किया जाता है तो किसी भी समय स्टेप को एक गवाह के रूप में खड़े होने दें, इसी तरह से इसे ब्रैनम टैबरनेकल में किया जाना है। यदि कोई अजनबी व्यक्ति आता है तो आपके पास अजनबी लोग हर समय होते हैं, क्योंकि ऐसा एक अंतर संप्रदायी भवन होने की वजह से होता है। यहाँ लोग आते हैं जो कि सही तरह से प्रशिक्षित नहीं होते हैं, उनके पास ये व्यवस्था नहीं होती है, वे सही प्रकार से नहीं जानते हैं, और उनके खुद के पास्टर वे बस उठ खड़े होते हैं और उनके संदेश को रोक देते हैं और एक वेदी की पुकार को रोककर और अन्य भाषा में बोलते हैं और इसी तरह की बातें। आप उससे बेहतर प्रशिक्षित लोग हैं, समझे। फिर सभा के बाद यदि वह उपद्रव मचाता है तो ये डीकन का स्थान है कि उनके पास जाए, आपके पास्टर को इसे नहीं करना है, जब तक कि यहाँ उस स्थान पर जहाँ कोई डीकन नहीं होता है, लेकिन एक डीकन को उस बात को देखना चाहिए, समझे। अब सभा के बाद यदि कोई व्यक्ति तब उठता है और एक संदेश को देता है, तो पास्टर यदि वो बस एक मिनट रुकना चाहता है और आगे जाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, देखो ये पास्टर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन फिर तुरंत ही वो डीकन उस व्यक्ति को इससे पहले वो इमारत से बाहर जाए, उन्हें एक तरफ ले जाए और उनसे इस बारे में बात करे, और यदि वे इस पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें इस डेप पर लाएं और कहें यही है वो जो कलीसिया के बिशप या प्रधान या जो बिशप है, कोई भी प्रधान देखे, यह वही है जिसे बाइबल में कहा गया है बिशपिक, देखें तो यह कलीसिया का सामान्य प्रधान है। चलो यह व्यवस्थाएं हैं और इसी तरह से हमारी कलीसिया ऐसे करती है। अब हम आपके लिए पसंद करेंगे कि आकर आप अपने संदेश को दें, लेकिन यदि आपको प्रभु से संदेश मिला है तो, और ये इसे दिया जाना है, यहाँ आकर और इसे हमारे मंच पर रखें और हमारे सेवक इसे सभा के लोगों के लिए पढ़ेंगे, एक संदेश जो सभा के लोगों के लिए है, लेकिन यह केवल वचनों को दोहराना नहीं होना चाहिए और इस तरह की चीजें, यह लोगों के लिए एक सीधे संदेश होना चाहिए, किसी चीज का जिसमें कुछ तो बात जगह लेने पर है या कुछ ऐसा करना चाहिए, ये समझ गया तो ठीक है।
Is there any better way to keep order in the church than to keep
क्या अब कलीसिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई बेहतर तरीका है जिससे हमें लोगों को बार बार डीकन के द्वारा बार बार इस तरह से याद न दिलाना पड़े? नहीं, मैंने अभी इसकी व्याख्या की है, यह सवाल संख्या 3 है। डीकन आपका कर्तव्य है कि आप दयालुता से और मित्रता के साथ कलीसिया में व्यवस्था बनाए रखें, और फिर आपको ऐसा करना चाहिए यदि कलीसिया में कोई व्यवस्था से बाहर होता है या यहाँ नशे की हालत में आता है या कोई तो अंदर आता है, जैसे उन्होंने एक बार वहाँ एक रात को उस सेवक को मंच पर गोली मार दी। आपने इसके बारे में सुना होगा कि नशे में धुत व्यक्ति एक डबल बैरल की शॉटगन बंदूक के साथ आता है, वह अपनी पत्नी के लिए पुकारने लगा और वो अपनी पत्नी को चाहता था और वो पास्टर की तरफ बढ़ गया और पास्टर ने उसे उसकी वहाँ बैठी हुई पत्नी को दिखाया, लेकिन वो तभी कलीसिया में ही उसे गोली मारने जा रहा था और पास्टर ने उससे निपटना आरंभ किया, और बजाय इसके वो व्यक्ति जो बंदूक के साथ था पीछे मुड़ा और पास्टर को पुलपिट पर ही गोली मार दी और उसके बाद अपनी पत्नी को गोली मार दी और उसके बाद खुद को गोली मार दी। अब यदि वहाँ पर डीकन लोगों का एक झुंड होता था जब वो व्यक्ति उस बंदूक के साथ उस दरवाजे में प्रवेश किया तो उसके ऊपर अपने हाथों को डालकर उसके हाथ से बंदूक ले लेते, समझे। देखो यही सुव्यवस्थित डीकन होते हैं, और अब ये बातें इस तरह से घटित हुई हैं जिस तरह से वे अब कर रहे हैं, आप बस किसी भी बात की होने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, डीकन लोग परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के पुलिसकर्मी होते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई और क्या सोचता है। कभी कभी कोई पुलिसकर्मी नहीं चाहता है कि वह किसी के पास जाकर और गिरफ्तार करे। हो सकता है वह उसके मित्रों में से एक हो, लेकिन उसने एक कार्य को करने के लिए शपथ ली है। कुछ भी हो, उसे इसे करना ही है। यही उसके शहर के लिए उसका कर्तव्य है। देखा, यही कलीसिया के लिए एक डीकन का कर्तव्य है। और कोई भी खड़ा होकर और पास्टर को दखल देना आरंभ करता है या ऐसा कुछ और पास्टर उसके संदेश में है, तो डीकन को उन लोगों के पास जाना चाहिए। उनमें से दो या तीन डीकन को कहना है, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं भाई, समझे। उसे कलीसिया से कार्यालय में लेकर जाएं, वहाँ या किसी अन्य कार्यालय में लेकर जाएं और उससे इस बारे में बात करें। कहें, आपको बीच में दखल नहीं देना है। आप जानते हैं, किसी भी तरह की सेवा के बीच में दखल देना यह एक व्यवस्था के द्वारा बड़ा जुर्माना है। देखा, लेकिन कुछ लोग जैसे कि एक अपराधी व्यक्ति या ऐसे ही कोई और आपके बीच में आते हैं, आप जानते हैं, और कुछ धार्मिक कट्टरपंथी और वैसा ही करना जारी रखते हैं, फिर डीकन, और यदि डीकन ऐसा नहीं दिखाई देता कि इसे नियंत्रित करने में सक्षम है, फिर ट्रस्टी बोर्ड या कलीसिया का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है और ऐसे व्यक्ति के लिए सहायता दे सकता है। आप ये जानते हैं। और अब मैं यहाँ फिर से सवाल को पूछता हूँ, क्या अब कलीसिया में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई बेहतर तरीका है जिससे हमें लोगों को बार बार डीकन के द्वारा बार बार अक्सर याद न दिलाना पड़े। अब मैं सोचता हूँ कि पास्टर को हमेशा बहुत बार या इस टेप को चलाए, यह टेप एक गवाह के लिए खड़े रहे। डीकन पुलिसकर्मी है और उनके शब्द नियम और व्यवस्था है। देखा, और उनके पास कलीसिया से और यहाँ तक कि राष्ट्र के नियमों से अधिकार है ताकि परमेश्वर के उस भवन को सही स्थान पर बनाए रखे। और कोई भी इस तरह से एक डीकन का विरोध करता है, 2 से 10 वर्ष तक संघीय कारावास में जाने का विवश होना पड़ेगा। यदि आप उन्हें जाने के लिए कहते हैं और वे ऐसा नहीं करते हैं, या ऐसे ही कुछ, कोई तो व्यवस्था से बाहर आचरण करता है, वह बस नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है, वह खुद को जिम्मेदार ठहरा रहा है या सभी प्रकार के जुर्माने या सारी चीजों के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराता है। और फिर यदि यह किसी स्थान पर आता है कि कोई तो अब जैसे, और यदि कोई उठकर और व्यवस्था से बाहर हो जाता है तो हो सकता है अन्य जबान बोलता है या ऐसे ही कुछ, मैं उस बात पर नहीं जाऊंगा, देखो उन्हें करने दो यदि वे एक अजनबी है तो। यदि वे हमारे अपने लोग हैं तो बस ऐसा करें, अगली रात को आपके डीकन्स को बस इस टेप को लेना है और कहें, अब हम सभा आरंभ करने से पहले कलीसिया की व्यवस्था इस टेप को चलाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर कोई इसे समझे और आप पास्टर जन और आप सभी एक साथ मिलकर इस तरह से काम कर सकते हैं। अब भाई ब्रैनम, संडे स्कूल के बारे में क्या है? भाई ब्रैनम, संडे स्कूल के बारे में तो ठीक है, क्या यह प्रचार की सेवा से पहले होना चाहिए? हाँ, हमारे पास हमेशा ही ऐसा होता है, प्रचार सेवा से पहले संडे स्कूल को करना है, और इससे उन छोटे बच्चों को एक मौका मिलता है जो संडे स्कूल में जाते हैं अपनी कक्षाओं को समाप्त करके, और यदि वे चाहें तो, और छोटे बच्चे इसे समझ नहीं सकते और उन्हें प्रचार की सेवा में सारा समय बैठाना होता है और फिर संडे का स्कूल होता है, इससे छोटे बच्चे थक जाएंगे। संडे स्कूल को पहले होने दे, एक समय को निर्धारित करें, बस एक निर्धारित समय पर कि संडे स्कूल सत्र के लिए जाना है। संडे स्कूल के संचालक को इसे देखना चाहिए कि यह संडे स्कूल एक ठहराए हुए समय में उस सत्र में होना है, उस निर्धारित समय पर और एक निश्चित समय पर समाप्त होएगा। सारे संडे स्कूल उसके लिए बहुत समय देते हैं और फिर समाप्त करते हैं। क्या पास्टर के अलावा वयस्क वर्ग के लिए कोई और शिक्षक होना चाहिए? यदि इससे पूरी तरह से सहमत है तो, यदि पास्टर संडे स्कूल को सिखाना चाहता है और फिर बाद में संदेश को लाना चाहता है तो ये अच्छी और बढ़िया बात है, यदि यह दोहरी सेवा करना चाहता है तो। लेकिन यदि वह नहीं करता है तब अपने वयस्क रविवार के स्कूल के लिए शिक्षक के लिए देखो अपने वयस्क वर्ग के लिए। और फिर यदि पास्टर के मन में कोई और है और वह व्यक्ति इसे करना चाहता है तो अपने आप को 30 मिनट के लिए दे दे, या जो भी आप अपना संडे स्कूल के लिए समय की अनुमति देते हैं, 30 या 35 मिनट, 40 मिनट, ये चाहे कुछ भी हो। और यहाँ एक घंटी को बनाए रखना चाहिए, और जब वो घंटी बजती है तो उसका मतलब है या तो कलीसिया की घंटी जब बाहर बजाई जाती है तो संडे स्कूल समाप्त कर दिया जाता है, और जब वह घंटी बजती है तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ सही व्यवस्था में करना है। वहाँ तब आपके पास बहुत समय हो सकता है, एक या दो स्तुति के गीत जो भी आप गाने जा रहे हैं, बहुत अधिक समय नहीं लेना है, आप लोगों को बहुत लंबे समय तक रोक रखकर थका देंगे, देखो। और बस घंटी बजाएं, एक स्तुति के गीत को लें और आप जो भी करने जा रहे हैं और फिर अपनी कक्षा के लोगों को अपने स्थान पर भेजें और तुरंत जब वह समय आता है तो कहें कि यह 10 बजे होगा या 10:30 को या 10:15 को, जो कुछ भी हो उस घंटी को बजाएं और प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा को समाप्त कर दे, यहाँ से निकलकर सभा के लोगों की ओर जाएं और फिर और रिपोर्ट संडे स्कूल की रिपोर्ट को दें और सारी बात को समाप्त करें और वे सारे जो होने वाली अगली प्रकार की सेवा के लिए रुकना चाहते हैं वे रुके रहें, फिर यही क्रम में करते रहें। सवाल है कितने? ओह जी हाँ, आपके पास होना चाहिए। एक 3 वर्ष का बच्चा वो उस बात को नहीं समझ सकता जो 14 वर्ष का बच्चा समझेगा। मैं सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा आगे जाना है। वहाँ कितनी कक्षाएं होनी चाहिए? आपको अपनी कक्षाओं को रखना है जैसे एक छोटी सी बच्चों की कक्षा जो वलालेन ग्राफ चित्रों के द्वारा बाइबल की कथा होती है उसको बताना चाहता है। यह 14 वर्ष के लड़के या लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा होगा, समझे? आपके पास कोई तो होना चाहिए जो उन छोटे बच्चों को सिखाए, या कोई बुजुर्ग माँ, या कोई तो ऐसा जो उनकी देखभाल करना जानता हो। अन्य कक्षाएं, मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जो वचन को सामने रखने में सक्षम हो, समझे? और वहाँ कक्षाएं को होना चाहिए। अब ये कहने के लिए कि वहाँ एक कक्षा की तरह हो सकती है, कम से कम 3 कक्षाएं होनी चाहिए। वहाँ थोड़े छोटे बच्चों की कक्षा होनी चाहिए, लगभग 5 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, और इसके बाद जो उस उम्र से नीचे हैं, अन्य सभी बच्चों को माँ के साथ रखा जाना चाहिए। और प्रचार के दौरान यदि ये आवश्यक हो तो यदि वे बच्चे उपद्रव मचाते हैं तो उन्हें नर्सरी में ले जाया जाए। यह नर्सरी उसी बात के लिए वहाँ पर होती है। और मैं सोचता हूँ कि उन कक्षाओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जैसे छोटे बच्चे जो लगभग 5 या 6 वर्ष की उम्र से लेकर 8 या 9 वर्ष या 10 वर्ष तक हैं, कुछ इस प्रकार से करें। और उसके बाद 10 वर्ष की उम्र से लेकर 15 वर्ष की उम्र तक जो किशोर वर्ग में होना चाहिए, और उसके बाद 15 से अधिक वयस्क वर्ग, क्योंकि वे इसके लिए काफी बड़े हैं, आजकल उन्हें एक नौकरी मिल सकती है और वे लगभग उस उम्र में मतदान करना चाहते हैं, सो उन्हें वचन को सुनने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन उस मुख्य सभागार में बाहर आकर और से सुने। शिक्षक कौन होने चाहिए? आप वहाँ पर हैं, ये आपके ऊपर है कि अपने शिक्षकों को लाने के लिए मतदान करें, और आपको ऐसा करना चाहिए, उन्हें वहाँ चुनाव में रखें, किसी को तो लें और कलीसिया के साथ मिलें और कहें कौन है यहाँ, कौन है जो प्रभु की अगुवाई को महसूस करता है, और फिर एक योग्य शिक्षक को नियुक्त करें और फिर इसे ऐसा ही किया जाए। यह सख्ती से करने वाला काम होगा भाइयों, यदि शिक्षक इसके लिए योग्य नहीं है तो शिक्षक को बदल सकते हैं। जब समय आता है परमेश्वर की अधीनता में, यदि मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्मन नेविल यहाँ पास्टर बनने के और अधिक योग्य नहीं हो सकते हैं, तो मैं कलीसिया में इसके बारे में उल्लेख करूंगा। जब मैं यहाँ पर एक बात को देखूंगा, सोचूंगा कि आप डीकन लोगों में कोई तो एक डीकन के होने के योग्य नहीं है, तो मैं कलीसिया में इसके बारे में उल्लेख करूंगा कि मैं देखता हूँ यहाँ पर एक कोई तो फलाना डीकन है जो कुछ तो ऐसा कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, और वह अपने कर्तव्य के पद को नहीं रख सकता है, और इसी तरह से इत्यादि, या एक खजांची या जो कोई भी है, मैं उसे अंदर या बाहर करने के लिए मतदान नहीं कर सकता, कलीसिया को ऐसा करना होगा। लेकिन मैं निश्चित रूप से इस बात को कलीसिया के सामने रखूंगा, देखो, क्योंकि यही है जो करना चाहिए, यही है जो मुझे करना चाहिए। प्रधान होने के नाते मुझे देखना और समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। हम स्वर्ग जा रहे हैं नहीं, यहाँ कुछ तो रैली या कुछ तो बहुत मजा करने के लिए है, और एक दूसरे को दबाने के लिए और बेसबॉल को खेलने के लिए है। हम यहाँ धरती पर सबसे अनुग्रह से भरी बात को संभालने के लिए है जो परमेश्वर का वचन है, और इसे ईश्वरीय व्यवस्था में से होते हुए लेकर जाना होगा। शिक्षक कौन होने चाहिए? यह आप पर है कि उन्हें चुने, लेकिन हमें बच्चों के लिए एक बुजुर्ग महिला को लेना है, कोई तो जो इसे कर सकती हो। लेकिन किशोरों के लिए मैं कुछ ऐसे शिक्षक को लूंगा जो सख्त हो, और न सिर्फ यहाँ वहाँ बाहर जाने और विनर पिकनिक करने के लिए। यदि वे एक विनर पिकनिक पर जाना चाहते हैं तो ठीक बात है, लेकिन बस सारी चीजों को उस पर रखते हुए इसे वचन में रखें, किसी ऐसे व्यक्ति को लें जो वचन की पकड़ में योग्य है, और ऐसा होना है। ये कलीसिया इसके लिए नहीं खड़ी है कि विनर पिकनिक करना ठीक बात है, और छोटी छोटी पिकनिक जो आप एक साथ जाना चाहते हैं और संगति करना, यह ठीक बात है कि आपको बच्चों का मनोरंजन करने के लिए इसे करना चाहिए, लेकिन इस स्थान पर यहाँ पर यह परमेश्वर का वचन है। विनर पिकनिक करते हैं जब आप एक साथ मिलते हैं या ऐसा ही कुछ, लेकिन परमेश्वर के इस घर में नहीं। और ये जानते हैं, निश्चय ही हम जानते हैं कि हम यहाँ इस पार्टियों की मूर्खतापूर्वक बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, और इस तरह की सारी चीजों पर हम आप इससे बेहतर जानते हैं। इसे व्यवस्था में रखने के लिए संडे स्कूल में कौन होना चाहिए? संडे स्कूल का संचालक, और यही है जो उसका काम है। اس سے ڈیکنز، خزانچی، پاسٹر اور کسی کے ساتھ کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، کہ اس کے ساتھ ڈیکن، ٹرسٹیوں اور پاسٹروں یا کسی کا بھی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے پاس اپنا خود کا ایک کاریالے ہے۔ آپ کا سنڈے اسکول شکشک کوئی بھی ہو، میں نہیں جانتا، لیکن اس سنڈے اسکول شکشک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر ککشا اپنی جگہ پر ہے اور ہر شکشک اپستھت ہے، نہیں تو اس کے استھان پر کسی انیہ شکشک کو بدلے میں رکھے یدی وہ اس دن پر نہیں ہے۔ تو تب رویوار سے ٹھیک پہلے جبکہ پاٹھ چل رہا ہوتا ہے، سنڈے اسکول سنچالک وہاں جا کر اور وہاں پریم دان کو لے جو ان کے یہاں ہوتی ہے، ان کے سنڈے اسکول کا دان اور ویورن کو دینا کہ کتنے لوگ اپستھت ہیں، ان کے اس ککشا میں کتنے بائبل تھے اور اتیادی، اور اس کا ایک ویورن تیار کرے، اور اس کے بعد پرچار کی سیوا سے ٹھیک پہلے سبھا کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جائے جب اسے یہ کرنے کے لیے سمے دیا جاتا ہے۔ جب ان کے پاس سنڈے اسکول کا ویورن ہوتا ہے، سنڈے اسکول ختم ہونے کے بعد بتائیں کتنے شکشک تھے، کتنے اپستھت تھے، کل کتنے سنڈے اسکول ہوئے تھے، کل ملا کر پریم دان کتنا آیا، اور اسی طرح سے اتیادی۔ ڈیکنز، خزانچی، پاسٹر انہیں یہ نہیں کرنا ہے، انہیں اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ سنڈے اسکول کے سنچالک کا کام ہے۔ اور پھر یدی وہ دیکھتا ہے کہ سنڈے اسکول کو کچھ چیزوں کی آوشکتا ہے، اس کے بعد اسے خزانچی بورڈ کے سامنے رکھنا ہے اور خزانچیوں کو اس پر پہلے ایک بیٹھک کو کرنا ہے، اور پھر خزانچی یدی وہ پاتے ہیں کہ یہاں پریاپت دھن راشی ہے اور اتیادی پوشاد دش کے ذریعے سے تب اسے خریدا جا سکتا ہے۔ یدی وہ ساہتیہ سامگری کچھ تو چاہتا ہے، یا ایسا ہی کچھ تو، کچھ بائبل یا کچھ تو، وہ کسی کے لیے کچھ بائبل کو خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جو سب سے ادھک شبد ڈھونڈ سکتا ہے یا وچنوں کا حوالہ دے سکتا ہے، کچھ پرسکار کو دینا یا ایسا ہی کچھ جو وہ دینے جا رہے ہیں، جیسے بھیٹ دینا اور ویسے کلیسیا کے مادھیم سے خریدنا چاہتے ہیں، تو اس بات کو ڈیکن کے سامنے رکھا جائے اور پھر انہیں یہ جاننے کے لیے کیا وہ کوشاگار میں ہیں، سمجھے؟ اور پھر میں سوچتا ہوں کہ اس پر پانچ سوالوں کو بتاتا ہے۔ اب اگلے ایک پر وہ ہے، بھائی برینم، کلیسیا کے ویوستھا کے سمبندھ میں ہم جس طرح سے ان ویوستھاؤں کو سمجھتے ہیں جو نئے کلیسیا کے سمرپن میں دیے گئے ہیں، اسی کے انوسار جانے کی کوشش کی ہے، اور ایسا کرنے سے کچھ ناراض ہو گئے ہیں اور کلیسیا کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ دوسرے ہم کچھ بھی کہتے ہیں نہیں سنتے، وشیش کر بچے۔ ہم نے ماتا پتا سے ان کے بچوں کے بارے میں بات کی ہے اور وہ انہیں نہیں سنبھالتے ہیں۔ اب کیا ہم نے غلط سمجھا ہے، یا کیا ہم اس کے وشے میں اسے غلط طریقے سے کر رہے ہیں؟ دھنیواد۔ اب مجھے اس کا اتر دینا چاہیے، جیسے یہ یہاں آیا ہے، کلیسیا کی ویوستھا کے سمبندھ میں ہم جس طرح سے ان ویوستھاؤں کو سمجھتے ہیں جو نئے کلیسیا کے سمرپن میں دیے گئے ہیں، اسی کے انوسار جانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ صحیح ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں، اب اسے ڈیکن ہونا چاہیے، مجھے لگتا ہے، کیونکہ یہ یہاں پر صحیح ہے، یہ ایک ڈیکن کا کام ہے، تو ٹھیک ہے۔ اور ایسا کرنے سے ہمارے پاس اکثر لوگ اکثر ہم پر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ مجھ پر بھی ناراض ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ویکتی پر ناراض ہوں گے۔ دیکھا، ایک ویکتی جو ایسا کرتا ہے، اس ویکتی کے ساتھ کچھ تو گڑبڑ ہے، وہ پرمیشر کے ساتھ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسیح کی آتما مسیح کی شکشا کے ادھین ہوتی ہے، مسیح کا بھون، مسیح کی ویوستھا۔ دیکھا، اور کوئی بھی پروش یا کوئی بھی استری یا کوئی بھی ویکتی، بچے، جو ایک ویکتی ڈیکن سے ناراض ہوتا ہے، جو انہیں بتائے، اور یا کوئی بھی ماتا پتا کو ایک ڈیکن سے ناراض ہوں گے۔ واسطو میں ہم اس کلیسیا سے ہر کسی کو چاہتے ہیں جو ہمیں مل سکتے ہیں، لیکن یدی یہ کیول کہیں تو اور پریشانی پیدا کرتا ہے، وہاں ایک کاٹا ہے یا کچھ تو گڑبڑ ہے، جیسا کہ ہم اکثر کہتے تھے، وہ ویکتی صحیح نہیں ہے، یدی وہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو کیول ایک ہی کام کو کرنا ہے، انہیں جانے دیں اور ان کے لیے پرارتھنا کریں، سمجھے؟ تب ہو سکتا ہے کچھ ڈیکن ان کے کبھی کبھی گھر جائیں یا اور پتہ لگائیں کہ وہ کیوں چھوڑ کر گئے ہیں، اور ان سے پوچھیں کہ کیا غلط ہوا تھا۔ پھر یدی وہ دیکھیں، یدی وہ انہیں میل ملاپ کرا سکتے ہیں، یدی وہ اسے نہیں کر سکتے ہیں، تب اپنے ساتھ دو یا تین گواہوں کو لے کر جائیں، جس سے ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائیں۔ پھر یدی انہیں سمجھایا نہیں جا سکتا ہے، تو اسے کلیسیا کے سامنے بتایا جائے، یدی وہ کلیسیا کے سدسیہ ہیں تو، تب وہ، اور پھر یدی وہ کلیسیا کے سدسیہ نہیں ہیں، اوشیہ ہی وہ اس سبھا کے سدسیہ نہیں ہیں، انہیں ادھیکار کرنے کے لیے بنانا چاہیے، دیکھو انہیں یہاں ہمارے ویوستھاؤں کو سننا ہے، کیونکہ یہ کلیسیا کے لیے ویوستھائیں ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں، चीजें जो मैं करना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन इन चीजों को किया जाना अवश्य है और मैं खुद को उजागर कर रहा हूं और इस टेप के द्वारा उन्हें यह बता रहा हूं, यह मैं हूं। वे मुझे बात करते हुए सुन सकते हैं और यह जान लें कि यह मैं हूं, आप लोग नहीं। आपने मुझसे ये सवाल पूछे हैं और मैं आपको यह सबसे अच्छा बता रहा हूं जो मैं जान रहा हूं कि परमेश्वर का वचन किस तरह से है। अब यदि वे लोग नाराज हो जाते हैं और आपसे बाहर चले जाते हैं तो वचन इसके बारे में क्या कहता है भाई ब्रैनम? वे हम में से बाहर चले जाते हैं क्योंकि वे हम में से थे ही नहीं और इससे बात खत्म हो जाती है, कलीसिया छोड़ देते हैं। यही है जो उन्होंने किया, तो ठीक है। वे दूसरे हम कुछ भी कहते हैं नहीं सुनते, विशेषकर बच्चे लोग। बच्चों को अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें ये घर पर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तक कि यदि ये मेरे बच्चे हों, मेरे बच्चे यहाँ किसी भी समय आते हैं, वे व्यवस्था के विरोध करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप एक उंगली को उठाएं। सारा, रेविका, जोसेफ, बिल्ली या जो भी हो सकता है, आप मुझे बताएं, मैं इसे देखूंगा। यदि वे अच्छा आचरण नहीं कर सकते, वे कलीसिया से दूर रहेंगे जब तक वे अच्छा आचरण करना सीख नहीं लेते। यह कोई अखाड़ा नहीं है, यह परमेश्वर का भवन है। यह एक खेलने का स्थान नहीं है और स्केटिंग करने का और नोट्स को लिखना और हंसना और आलोचना करना। यह परमेश्वर का भवन है, इसे पवित्रता से पालन किया जाना चाहिए। आप यहाँ आराधना करने के लिए आते हैं। यह एक पिकनिक मनाने का स्थान नहीं है, यह कोई मिलने का स्थान नहीं है, यह पवित्र आत्मा से मिलने का स्थान है। उसे सुने, उसे जो कुछ कहना है, न ही एक दूसरे को सुनना है। हम यहाँ एक दूसरे के साथ संगति करने के लिए नहीं आते हैं, हम यहाँ आते हैं मसीह के साथ संगति करने के लिए। यह आराधना का भवन है और बच्चों को अवश्य ही अनुशासन में रखना चाहिए, और यदि वे उन्हें माता पिता के द्वारा अनुशासन में रखना चाहिए। इसका ज्ञात होने दो कि यदि ये डीकन्स, यदि इन बच्चों के माता पिता यह नहीं सुनते हैं जो इन डीकन ने कहा, तब इन माता पिता को खुद को सही करना चाहिए। हमने माता पिता से उनके बच्चों के बारे में बात की है और वे उन्हें नहीं संभालते हैं। यदि वे इस कलीसिया के सदस्य हैं, तो आपको अपने साथ दो या तीन को लेकर और किसी कार्यालय में उस माता पिता के साथ एक निजी बैठक को करना चाहिए। मैं परवाह नहीं करता कि ये कौन है, यदि ये मैं हूँ, यदि ये भाई नेविल है, यदि बिल्ली पॉल और उसका छोटा लड़का है, यदि ये भाई कॉलिंस और उनके बच्चों में से एक है, या आप में से कोई भी हो, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर और वचन के प्रति कार्यबद्ध है। यदि यह है तो फर्क नहीं पड़ता यह कौन है, हमें एक दूसरे को बताना है और एक दूसरे के साथ ईमानदार बने रहना है। यदि हम एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं हैं, तो भला परमेश्वर हमारे साथ कैसे व्यवहार कर सकता है, हम उसके साथ ईमानदार कैसे बने रहें? समझे, यह एक व्यवस्था है। हमें परमेश्वर के भवन को बनाए रखना चाहिए और डीकन को पता होना चाहिए कि इसे कैसे करना है। देखा, और इसलिए मैं आपको जो भी बता रहा हूँ उन चीजों को पकड़ के रखें। और यदि यह आप माता पिता को बताएं और वे इसे नहीं सुनते तो आप दूसरे डीकन या खजांची में से एक को साथ लें, या इस कलीसिया के कुछ भले लोगों को और बताएं, अपने खजांची को लें, अपने डीकन बोर्ड को लें, सारे डीकनों को इकट्ठा करें, कहें भाई जॉन्स, भाई हेडरसन, भाई जैक्सन या जो भी होने दो, देखो उनके बच्चे गलत व्यवहार कर रहे हैं, हमने उन्हें उनके बच्चों के बारे में दो या तीन बार बताया और वे इसे ध्यान नहीं देते। उसके बाद भाई जॉन्स को अंदर बुलाएं या भाई जो कोई भी हो और कहें, भाई जॉन्स, हमने आपको यहाँ एक बैठक के लिए बुलाया है, हम आपसे प्रेम करते हैं और हम आप हमारा एक भाग हैं, आप हम में से एक हैं, मुझे बस इस फलाना टेप को चलाना है और सुने कि भाई ब्रैनम ने इसके बारे में क्या कहा है। देखो, अब हमने आपसे उन बच्चों के व्यवहार करने के बारे में बताया है। देखा, यदि वे सही व्यवहार नहीं करते हैं और आप उन्हें कलीसिया में ऐसा व्यवहार करने से नहीं रोक सकते हैं, जब आप कलीसिया में आते हैं तो उन्हें किसी के साथ छोड़कर आएं जब तक वे सीख नहीं लेते कि उन्हें अपने आप परमेश्वर के भवन में कैसा व्यवहार करना है। समझे, लेकिन ये एक व्यवस्था है, इसका पालन किया जाना है। समझे, अब दूसरा आगे सवाल ऐसा है, अब क्या हमने गलत समझा है? नहीं श्रीमान, आपने गलत नहीं समझा, ये सही है। मैं ये फिर से कह रहा हूँ, ये नियम है। सेना में वे आपसे नहीं पूछते हैं क्या आप फलानी चीज को करेंगे, यदि आप सेना में होते हैं तो आप इसे करने के लिए मजबूर होते हैं। समझे, और इसी तरह से है, मैं सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मजबूर हूँ, मैं इसके लिए खड़ा रहने के लिए मजबूर हूँ, इसे ध्यान नहीं देते हुए कि मेरे दूसरे लोग और भाई लोग और इत्यादि इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं ऐसा करने के लिए मजबूर हूँ। मैं भावनाओं को ठेस पहुंचाऊंगा और मनुष्य को काटूंगा छाटूंगा। लेकिन यदि मैं आप उस वर्ल्ड की तरह नहीं करना चाहते, समझे, यदि आप उस एक व्यक्ति या इत्यादि से सहमत नहीं हैं और फिर भी उससे हाथ मिलाते हैं और अभी भी उस व्यक्ति के प्रति वही विचार है, तब आपके साथ कुछ तो गड़बड़ है। यदि मैं उस व्यक्ति से असहमत नहीं हो सकता, कड़वाहट के साथ एक तरफ से दूसरी तरफ, और अभी भी उसके लिए वैसा ही सोचते हैं जैसे मसीह था, तो मेरी आत्मा के साथ कुछ तो गलत है, मेरे पास मसीह की आत्मा नहीं है, समझे। यदि वो कहता है तो ठीक है भाई ब्रैनम, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी शिक्षा ये है वो है, तो ठीक है भाई, आओ आप और मैं उसी कारण के लिए एक साथ आए, हम इसे खुद के लिए ले लेंगे, हम यहाँ अपने आप से कमरे में जाकर हम इसका कारण ढूंढ निकालेंगे। और वो बस मुझे टुकड़ों में काटता है और मुझे उन बातों को उसे वापस कहना है। यदि मेरे हृदय में मैं उसके बारे में उसी तरह से महसूस नहीं कर सकता कि वो अभी भी मेरा भाई है और मैं उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कभी उसकी सहायता नहीं करूँगा। वहाँ कोई नहीं है, मेरे पास उसकी सहायता करने का कोई जरिया नहीं है। यदि मैं उससे प्रेम नहीं करता तो मेरा वहाँ पर जाने का क्या फायदा है। उससे कहें पहला स्थान पहले, भाई मैं आपसे प्रेम नहीं करता और मैं इसे अपने हृदय से ठीक यहीं बाहर निकालूंगा, इससे पहले मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं तब तक आपकी सहायता नहीं कर सकता जब तक मैं आपसे प्रेम नहीं करता। और यह सही बात है और यही तरीका है। देखो, इसे करते रहें, आपने इसे बिल्कुल सही किया है, इसे इसी तरह से होना चाहिए, आपने इसे कभी गलत नहीं समझा। क्या हम इसके विषय में गलत तरीके से कर रहे हैं? नहीं, इसे पालन करने का यह सही तरीका है। व्यवस्था को बनाए रखें क्योंकि ये निरंतर, अब छोटे बच्चे और माताएं, छोटे बालक और इत्यादि, वे रोएंगे और यदि वे बहुत अधिक रो रहे हैं और वहाँ ऊपर आपके पास्टर को बीच में रुकावट डाल रहे हैं, आप याद रखें आप उसके अंगरक्षक हैं, आप हैं उसके सुसमाचार के अंगरक्षक हैं, समझे। और यदि ये प्रभु के संदेश के बीच में रुकावट को डाल रहे हैं, तब जो डीकन है आपको क्या करना है? बिल्कुल वैसे ही, मनुष्य अन्य भाषा बोलता है तो वो कर्तव्य से बंधा है, और एक मनुष्य प्रचार को देता है उसके वचन के प्रति कर्तव्य से बंधा है, वह इन चीजों के लिए कर्तव्य से बंधा हुआ है। आप में से हर एक जन उस कार्यालय के प्रति कर्तव्य से बंधा है, और बस यही है जिसे करने के लिए हम यहाँ पर हैं। अब हम बहुत लंबा समय तक इंतजार नहीं करना चाहते और मैं जानता हूँ कुछ ही मिनट में किसी से मिलना है, इसलिए मैं बस जल्दी करने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी मैं कर सकता हूँ। भाई ब्रैनम, यहाँ इस कार्ड में दो सवाल हैं। भाई ब्रैनम, लोगों के लिए कलीसिया में प्रेम दान को लेने की क्या नीति होना चाहिए, इसे कैसे किया जाना चाहिए? मैं सोचता हूँ कि लोगों के लिए कलीसिया में प्रेम दान नहीं लेना चाहिए जब तक वो आपके पास्टर के लिए नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि यदि कोई प्रेम दान के लिए वहाँ आता है या ऐसा ही कुछ जो, या कोई व्यक्ति बहुत ही आवश्यकता में है, जैसे यहाँ हमारे सदस्यों में से, हमारी सभा के लोगों में से है, कहा जाए तो यदि हमारे भाइयों में से कोई है और उन्हें कुछ परेशानी है, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि तब चाहिए मंच पर से घोषणा की जाए और पास्टर को ऐसे करने दें। मैं सोचता हूँ कि ऐसा करना उसका कर्तव्य है। कोई भाई जिसे जिस किसी चीज की आवश्यकता है तो वो कलीसिया के सामने इसे रखे यदि वह इस तरह से लेना चाहता है। यदि ये कोई तो आवश्यकता में है और फिर आप प्रेम दान को उस व्यक्ति लेना चाहते हैं जो आवश्यकता में है, फिर बोर्ड एक साथ मिले और कुछ रकम पर सहमत हो जो वे इसे उस कोषागार से व्यक्ति को देना चाहते हैं। लेकिन यदि उस समय कोषागार में कम रकम है और वे इसका खर्च नहीं कर सकते हैं, फिर इसे आगे उठाना होगा। ठीक है, आकर इसकी बोर्ड के साथ बात की जाए, पास्टर को नियमों को देते हुए, और पास्टर इन कुछ बातों को पूछे, कहे अब आज रात हमारा भाई जॉन्स, उसके साथ एक भयानक दुर्घटना घटी है, उसका घर जल गया, और आज रात मसीह होने के नाते हम एक साथ बढ़ते हैं, हम में से हर एक जन संकल्प ले कि भाई जॉन्स को उनके घर को फिर से वापस लाने में हम क्या सहायता कर सकते हैं। देखो, या ये जो भी है, देखो हम ऐसा करें, इसे मंच पर से बोला जाए, इसे करने का यही तरीका है, और तब संकल्प को दिया जाए और फिर इसे कलीसिया के खजांची को सौंप दें, और ये संकल्प का पैसा कलीसिया के खजांची के जरिए से किया जाना है और उसे दिया जाता है, और उस व्यक्ति को इसके लिए एक रसीद दें, क्योंकि मैं नहीं जानता कि वह टैक्स मुक्ति है या नहीं, मुझे लगता है यह कुछ ऐसा ही है। अब लेकिन जब ये बात आती है, जैसे अजनबी व्यक्ति आता है, एक अजनबी व्यक्ति अंदर आता है, जैसे एक व्यक्ति आकर और कहता है, ठीक है, क्या आप जानते हैं मैं एक यात्रा पर हूँ और मेरा एक टायर फट गया है और मुझे एक नया टायर चाहिए, आज रात मेरे एक नए टायर के लिए एक प्रेम दान लें, अब ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और क्या ऐसा लगता है, क्या यह कोई एक योग्य चीज लगती है, कोई तो जिसे आप जानते हैं वो बोर्ड से मिलकर और नियुक्त कुछ पैसों की राशि को खजांची से लेकर उस व्यक्ति को एक टायर खरीदने के लिए दे या जो कुछ भी था। या तो यदि कलीसिया के कोष में पैसा कम है और यह बोर्ड के द्वारा तय किया गया है, ये पास्टर को इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, डीकनों को इसमें करना चाहिए, देखो या बोर्ड को करना चाहिए। और अब यदि यह सहमत है तो इस बात को पास्टर को दे दें। पास्टर प्रेम दान को ले सकता है, लेकिन ध्यान दें, यदि यह एक अजनबी है या एक आपात स्थिति में है, तो एक व्यक्ति को थोड़े से पैसे की आवश्यकता है और आपको लगता है कि यह उचित कारण के लिए है। अब ये मेरी राय है, यदि यह वास्तविक उचित कारण के लिए है और इसे आप जानते हैं यह एक उचित कारण के लिए है। अब पहले यदि आप वहां जाओ और भवन पर मेरी किताबों को देखते हैं, लोग आकर और कहते हैं मैं इस फलाना फलाना कलीसिया से और मैं आदरणीय फलाना फलाना हूं और यहां सड़क पर नीचे कुछ परेशानी मेरे साथ हुई थी और मुझे एक जोड़े टायरों की आवश्यकता है और उसे पता है कि मैं अभी अभी एक सभा से आया हूं और मेरे पास कुछ प्रेमदान था या ऐसे ही कुछ और, मैं लगभग सब उसे दे देता हूं टायर के एक नए जोड़े को लेने के लिए और मिनटों में देखता हूं ऐसा कोई सेवक कभी था ही नहीं, कभी भी ऐसे स्थान पर रहता ही नहीं था। और इन सारे वर्षों में किताबों पर $10,000 या $20,000 मेरे पास आए हैं जिसे मैंने इसी तरह से दे दिया है। उसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं जानता कि वे कहाँ से थे। मालूम पड़ा कि अन्य सेवकों का भी यही कहना है क्योंकि उसने मुझसे इतना और इतना पैसा लिया और ऐसा ऐसा और वैसा कहा। अब कलीसिया जिम्मेदार नहीं है, केवल वो खुद ही है, ये सही है, उनके अपने लिए वे जिम्मेदार हैं। लेकिन यदि कोई योग्य कारण दिखाई देता है और फिर यदि तो आप खजांची से कह सकते हैं, अच्छा अब एक मिनट रुके, ये व्यक्ति वहाँ वो है, उसकी कार नीचे खड़ी है, ऐसा है, ये घटित हुआ और ऐसा, ये हमारी सभा का सदस्य नहीं है, देखें, लेकिन इस तरह से है। फिर यदि वे इस तरह से करना चाहते हैं और एक बाहरी व्यक्ति के बारे में कुछ तो विशेष कहते हैं, हमारे अपने नहीं, अब देखो हमारे अपने लोग नहीं, अपने लोग उनके अपनों के भाइयों के साथ यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन यदि यह बाहर का है, यदि वो व्यक्ति कहता है कि वह भूखा है या कोई तो उसके पास जाकर और उसकी जेब में कुछ प्रेम दान को डालना चाहता है जो ये आप पर है, लेकिन मैं कलीसिया के दान के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर यदि कलीसिया के लोगों को दान देने के लिए कहा जाता है तो अब यदि आपको कोई सुसमाचार प्रचार करने वाला मिलता है, अवश्य ही जो यहाँ प्रचार करने आया हुआ है, तब आप लेते हैं। आप इससे पहले वो आता है यह समझने वाली बात है, आप जानते हैं कि आप उसे कुछ प्रेम दान देंगे या उसे वेतन देंगे या जो भी वो करना चाहता है। लेकिन फिर यदि यह व्यक्ति यहाँ पर है और यह एक उचित कारण के लिए है और पास्टर और बोर्ड इस बात पर सहमत होना चाहेगा और इस बात को पास्टर को बताएगा, तब पास्टर को बताने दो एक फलाना फलाना व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, उस व्यक्ति को हम नहीं जानते, उसने आकर और उसने हमसे पूछा, वो कहता है कि उसके बच्चे भूखे हैं, हमें समय नहीं मिला, हमारे पास समय नहीं था कि उसकी उस मांग की जांच करें, समझे। यदि वह ऐसा कुछ है तो हमारा, यदि वह कोई भी हमारा अपना बीच में है, हमारे अपने स्वयं के डीकन उन मांगों की जांच करें, समझे। और फिर यदि यह उपयुक्त है तो इसे करें, यदि उपयुक्त नहीं है तो इसे ना करें, मत करें। लेकिन अब यदि ये व्यक्ति यहाँ पर आता है तो आपके पास्टर को इसे कहने दें। अब ट्रस्टी बोर्ड ने मुझे बताया कि वे इस व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, वह कहता है कि उसका नाम जिम जॉन्स है या जो कुछ भी हो सकता है और वह ठीक यहीं पर बैठा हुआ है। क्या आप खड़े होंगे मिस्टर जॉन्स? अब मिस्टर जॉन्स, सभा की समाप्ति पर आप बस पीछे के दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएं, जैसा कि आप बाहर जाते हैं, और यदि किसी भी लोगों को आपके हृदय में महसूस होता है या जो कुछ भी आप इस व्यक्ति के लिए करना चाहते हैं वो इसे दे दें जैसे आप बाहर जाते हैं। अब क्या ये समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ गया? वे लोग जो टेप पर हैं और एक भाई कॉलिंस उसे इस बात को अपने टेप पर डालने से चूक गए। मैं इस हवाले को फिर से बहाल करना चाहता हूं दोबारा, क्योंकि वो हमारे डीकन में से एक हैं। यदि कोई भी हो, एक व्यक्ति आता है और आपातकालिक में है और वह कलीसिया से प्रेमदान को चाहता है, तो खजांची या डीकन्स एक साथ मिले और वे एक साथ मिले और इस निर्णय को लें और फिर पास्टर को बताएं कि यह इस तरह से किया जा सकता है। उसे पास्टर को ऐसा कहने दें, यह फलाना व्यक्ति, उसे नाम से पुकारे, हम उसे नहीं जानते और हमारी यह नीति है कि हम लोगों के लिए प्रेम दान को लेने से पहले जांच करें और जो हमारे अपने लोग हैं। लेकिन यह व्यक्ति जो यहाँ पर है वह कहता है कि वह टूट चुका है, उसके पास एक आपातकालीन स्थिति है, उसके बच्चे बीमार हैं, वह अपने बच्चों के लिए दवा लेने की कोशिश कर रहा है या जो कुछ भी है, आपातकालीन स्थिति हो सकती है। अब वो यहीं पर है, क्या आप खड़े होंगे श्रीमान? देखो और उसे खड़े होने दें और कहें अब आप लोग देख रहे हैं कि कौन वो कौन है। अब इस सभा के खत्म होने पर यह व्यक्ति सामने के दरवाजे पर खड़ा होगा और बाहर जाने वाले लोगों को यह महसूस होता है कि आप इसमें योगदान को देना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। हमने केवल कलीसिया में इसकी घोषणा की है, आप इसे मंजूरी नहीं दे रहे हैं, आप केवल इसकी घोषणा कर रहे हैं। देखो किसी अजनबी के लिए यह मेहमानदारी है, समझे? अब समझ गए तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यह सवाल को सुलझा देता है। उन टेपों के बारे में क्या? अभी जैसा कि उन टेपों के बारे में क्या, यह एक प्रश्न चिन्ह है। जैसे बहुत से लोग एक कार्यालय को लिखते हैं और आपको टेप पर प्रक्रिया के लिए दोषी ठहरा रहे हैं, इसके अलावा उन दूसरों के बारे में क्या है जो यहाँ वहाँ कलीसिया में टेप को बेचते हैं? यदि श्रीमान मगवीरे को उन टेपों पर अधिशुल्क यानी रॉयल्टी चुकाना पड़ता है तो ठीक है, टेप एक ठेके के द्वारा दिया जाता है। और यदि मैं मुझे अभी पता नहीं है कि कब ठेके की समय सीमा समाप्त होती है, लेकिन खजांची, यह बात खजांची से संबंधित है, ना ही डीकन पर खजांची, ना ही पास्टर, लेकिन खजांची। वे खजांची हमेशा ही अक्सर वे एक ठेके को लिखते हैं, जैसा कि मैं इसे समझता हूँ, और यदि यह गलत है तो खजांची सही करते हैं। इन खजांची के पास उस व्यक्ति के साथ एक समझौता होता है जो टेप को बनाता है और टेप विशेष विक्रय अधिकार के द्वारा होता है। कोई भी और टेप को नहीं बना सकता है जब तक उस व्यक्ति के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है जिसके पास विशेष विक्रय अधिकार है, और कोई और टेप नहीं बेच सकता है जब तक उस व्यक्ति के द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है जिसके पास विषय विक्रय अधिकार है, क्योंकि यही वो नियम है। देखो, वह विशेष विक्रय अधिकार इसे अधिकार में रखता है, समझे? और ये वो जो विशेष विक्रय अधिकार के अधिकार को रखता है, यदि ये चाहता है कि फलाना फलाना टेप को बनाए, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। यदि वो हर किसी को टेप बनाने देता है, यह उसके ऊपर निर्भर है। यदि वो चाहता है हर कोई टेप को बेचे, तो विशेष विक्रय अधिकार रखने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। उसके पास विशेष विक्रय अधिकार के धारक से हस्ताक्षर किए हुए एक छोटा सा लिखित नोट होना चाहिए टेप बनाने और बेचने के लिए, क्योंकि वह तब नियम में स्पष्ट होता है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति नहीं रखता है, उस पर उसके विशेष विक्रय अधिकार हैं, आप अपने आप से उत्तरदायी होंगे। यदि कोई खराब व्यक्ति है जो इसके लिए कुछ परेशानी का कारण बनना चाहता है, वह वास्तव में इसे कर सकता है। आप उस विशेष विक्रय अधिकार के साथ आगे बढ़ते हैं और एक स्व अधिकार में रखने के जैसे है। आप देखते हैं, एक ही बात है, आपको इसके करने के लिए अनुमति नहीं है, ऐसा करने पर बड़ा जुर्माना है। इसलिए यदि लोग टेप बना रहे हैं तो शायद उन्होंने श्रीमान मगुएरे से समझौता किया है, जिनके पास जो टेप पर अधिशुल्क को या रॉयल्टी को लेते हैं। और अब और मैं इसके बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं आपके साथ ज्यादा नहीं रहता हूँ ताकि जानूं ये चीजें कौन है और यह किसका जिक्र किया जा रहा है। मुझे लगता है कि श्रीमान मगुएरे के पास अभी भी वो रॉयल्टी यानी अधिशुल्क है, क्योंकि वहाँ मैं कैलिफोर्निया या एरिजोना में रहता हूँ, जहाँ पर भी मैं हूँ, मैं समझता हूँ कि वे अभी भी कैलिफोर्निया से टेप खरीद रहे हैं। भाई सॉटमैन, श्रीमान मगुएरे के ससुर, जो यहाँ हमारे कलीसिया में भाई हैं, मुझे लगता है कि श्रीमान मगुएरे के पास इस पर अभी भी विशेष विक्रय अधिकार है। और अब टेप बनाने पर साथ ही हमेशा से शिकायतें आती रही हैं। अब जब इस कलीसिया के आर्थिक बातों से संबंधित किसी भी चीज पर शिकायत होती है, तो खजांचियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे उस चीज को देखें कि बात साफ हुई है। देखा, किसी भी प्रकार से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ देखें, ये यहाँ इस कार्ड पर कहता है कि वे कार्यालय को लिख रहे हैं और आपको दोषी ठहरा रहे हैं। स्पष्ट रूप से मेरे पास इस पर कई पत्र लिखे गए थे और जानना चाहते हैं कि वे क्यों उन्हें टेप नहीं मिल सकते। अब आप जानते हैं, आपका करारनामा या ठेका उस एक के साथ होता है जिसके पास विशेष विक्रय अधिकार होता है। जैसा कि मैं समझता हूँ, वे टेप, मैं उनके साथ कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहता हूँ। यदि सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए कोई टेप का उपयोग कर सकता है तो आमीन। लेकिन सबसे पहले भाई रॉबिन्सन और उन्होंने बनाना आरंभ किया, भाई बिलर और उनमें से बहुत से लोगों ने उन्हें बनाना आरंभ किया, और फिर दो लड़कों ने, भाई मर्सियर और भाई गोवर्ड, उन्होंने वर्षों तक बनाया और निश्चय ही जब उन प्रत्येक जन ने उन्हें बनाया हमारे पास हर एक पर शिकायतें आती रही हैं, लेकिन ये हाल ही में यहाँ दिखाई देता है वहाँ उनको टेप न मिलने के बारे में बड़ी शिकायतें आती रही हैं। मुझे देश भर से लोगों ने फोन किया है और फिर एक और बात होना है, टेप को फिर से पता करें जिस पर एक बात को एक मिनट के लिए चलाया जाना है और एक और बात को दूसरी बात को चलाना है और फिर ये यहाँ तक समझ भी नहीं सकते हैं कि ये क्या है। अब ये लोग जो इन टेपों का भुगतान कर रहे हैं उन्हें एक वास्तविक अच्छी टेप मिलना चाहिए। मैं परवाह नहीं करता कि इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या करना है, हमें अपने ग्राहकों और हमारे भाइयों को देखना है जो कि हमारे ग्राहक और हमारे भाई इत्यादि हैं, उनके पास ए संख्या एक टेप होना अवश्य है। अब आप खजांचियों को इसे देखना है कि ये लोग संतुष्ट हैं कि नहीं, यदि वे संतुष्ट नहीं हैं, तो उनका पैसा उन्हें तुरंत लौटाया जाना चाहिए। और किसी ने मुझे फोन किया और कहा कि वे महीनों से टेप के लिए इंतजार करते आ रहे हैं। अब मैं नहीं जानता कि भाई मगुएरे इसकी कैसी देखभाल करते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता और मैं ये मेरा काम नहीं है इसके बारे में कुछ भी जानना, ये उसका उनसे और उनके खजांचियों का काम है और मैं उनमें कदम रखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि इसका नियम क्या है, समझे। इसका इन टेपों के लिए जो नियम है, उनके द्वारा भेजे जाने वाले समय से उनके टेप एक दिन के भीतर या तीन या चार या पांच दिनों के भीतर उनके रास्ते पर होने चाहिए। उनके लिए टेप को भेजने के बाद इसे डाक में होना चाहिए या विशेष विक्रय अधिकारी किसी भी समय रद्द कर सकता है जब ये मांग या ऑर्डर को अस्वीकार होते हैं। देखा, अब और हर छह महीने या एक वर्ष में इसे नए सिरे से होना चाहिए, इस समझौते को नए सिरे से करना चाहिए। आपको इस ठहराई हुई तारीख पर आपको मिलना चाहिए जो विशेष विक्रय अधिकार कहता है कि आपको मिलना है और फिर ऐसा किया जाना चाहिए। यही है उस समय पर दूसरे लोग आए और आप दूसरों को सूचित करना चाहिए जो टेप के बारे में पूछते आ रहे हैं और अपने समझौते के साथ आकर और इसे बैठ कर और इस पर बात करें। आप इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, समझे, और इसे ठीक तरीके से किया जाना चाहिए क्योंकि ये शिकायत मिलती आ रही है। उन्होंने लियो और जीन के साथ शिकायत की, उन्होंने हरेक के साथ शिकायत की है, इसे भाई मगुएरे के साथ शिकायत की और इसकी शिकायत किसी और के साथ की जाएगी, लेकिन आओ जाने की शिकायत क्या है। अब लेकिन जब टेपों पर ढेर सारी शिकायतें आना आरंभ हो जाती है, उनके बक्सों में दर्जनों उसमें पत्र डालते हैं, देखो यह टेप बनाने वाले के ऊपर नहीं आता है, यह तो मुझ पर आता है, वे हमेशा इसके बारे में मुझ पर ही आवाज उठाते हैं। अब एक मसीह होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं यह देखूं कि क्या लोगों को वो प्राप्त होता है जिसके लिए वो भुगतान करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप खजांची लोग इस बात को देखें कि वे इसे प्राप्त करें। यदि उन्हें अधिक दाम देना है तो एक बेहतर टेप को लें, एक बेहतर मशीन को लें। हम चाहते हैं कि कोई तो व्यक्ति उस टेप को बनाए जो इसे सही बनाता हो, हमारी यही दिलचस्पी है। टेप अवश्य ही सही बनाना चाहिए और खरीदने वाला अवश्य ही संतुष्ट होना चाहिए, या तो पूरी तरह से टेप की बात को रोकना चाहिए, हमारे पास कोई टेप नहीं होने दो, बस कोई भी उन्हें बनाने दो जो इसे चाहता है। लेकिन यदि वे उनके लिए दाम को लेने जा रहे हैं तो उन्हें यह देखना चाहिए कि उन्हें वही मिले जो उन्होंने जिसके लिए दाम को चुकाया था, क्योंकि यही मसीहत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और जब वे यहाँ सुसमाचार सुनने को आते हैं तो मैं उन्हें सबसे अच्छा देना चाहता हूँ जिसे मैं जानता हूँ कि उन्हें कैसे देना है। देखो, और जब वे यहाँ पर आते हैं तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप देखें कि हर कोई और सब चीजों का पालन किया जाता है या नहीं। यही कारण है कि मैं आप डीकंस खजांची पास्टर से यहाँ पर आज रात कहता हूँ कि आपको अवश्य ही इस हर एक शब्द का पालन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग परमेश्वर को पाने के लिए आते हैं और हमें इन चीजों को व्यवस्था में रखना है। और टेपों को भी सही बनाना चाहिए, यदि उन्हें अधिक दाम को देना पड़ता है, यदि उनके पास द्वितीय श्रेणी के टेप होते हैं जो वे चला रहे हैं, तो बेहतर टेप को लें। यदि उन्हें टेप के लिए अधिक दाम लेना है और उनके लिए अधिक दाम को लें, उस व्यक्ति को वही मिले जो वे दाम लेते हैं। मुझे अधिशुल्क यानी कि रॉयल्टी में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, एक पैसा भी नहीं, और न ही कलीसिया को दिलचस्पी है। मैं नहीं चाहता कि आपको हो इस अधिशुल्क रॉयल्टी में दिलचस्पी ना लें। यदि वे कुछ भुगतान करते हैं तो मैं सोचता हूं कि आपको इस कारण से कुछ अधिशुल्क रॉयल्टी को लिया जाना है। मैं सोचता हूं कि ऐसा कुछ है जो उन्होंने कहा श्रीमान मिलर, और उन्होंने नियम के बारे में बताया, हमने कुछ तो अधिशुल्क रॉयल्टी या इत्यादि लेते हैं। यह सब आप पर है कि इसे देखें, मैं नहीं, मेरा इसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। जो करना है एक साथ बैठकर करें, इस सभी को आप ध्यान दें। मैं इस सब की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको इसका तरीका बता रहा हूँ जो होना चाहिए और जिसे अवश्य ही किया जाना चाहिए। यह आप समझ गए, मैंने कहा अवश्य ही किया जाना चाहिए। वैसे ही हम चाहते हैं कि ठीक बाहर भी ऐसे ही किया जाए, और यदि उन्हें एक बेहतर मशीन को होने के लिए इसे लेना है तो एक बेहतर मशीन को ले लें। यदि इससे होना है, अब मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हरे जिस कार्य क्षेत्र में मैं जाता हूँ, इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, मैं आपको सूचित कर दूंगा कि मैं वहाँ बाहर किन उपदेशों को प्रचार करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले ही यहाँ पर और मैंने आप सभी से वायदा किया था, जिसे मैं रविवार रात को वापस से ले लूंगा, इससे पहले कि मैं कोई भी नया संदेश प्रचार करूं, इसे पहले इस भवन से ही आना है, क्योंकि वे एक बेहतर रिकॉर्डिंग के लिए देख रहे हैं। क्या आपको यह याद है? फिर मैं यहां आता हूं, अपने संदेशों को प्रचार करता हूं, फिर वापस बाहर जाता हूं और टेप मैन को सूचित करता हूं कि कौन कौन सी सभाएं हैं। वे मुझसे पूछते हैं कौन कौन से, आप क्या प्रचार करने जा रहे हैं। मैं उनसे बताता हूं, इस रात को मैं यह और यह, इस रात को यह और यह लेने जा रहा हूँ। सो उनके पास यह होने से वे टेप को बनाकर और इसे ग्राहक के लिए तैयार कर सकते हैं, जिससे ठीक वहीं पर टेप उन्हें मिल जाए, उसी वक्त उनके साथ वो टेप को लेकर जाएं। तब उनके पास सभा में एक बेहतर टेप होगा, क्योंकि यह ठीक यही भवन पर बनी हुई टेप है जहाँ पर ध्वनि के लिए उत्तम व्यवस्था है, समझे। अब इस महान सुसमाचारक प्रचार की सेवा करने में अब जाते हुए अब विदेशों और इत्यादि में मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं इसका वायदा नहीं कर सकता कि आप देखो, मैं वायदा नहीं कर सकता कि मैं अपना पहला संदेश यहाँ पर दूंगा, क्योंकि जब आप यहाँ वहाँ संदेशों को प्रचार करते हैं तो आपके पास कुछ तो होना है। यह आपके लिए पुराना हो गया है और आप उस पुराने के लिए लाचार हैं उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं। आपको कुछ तो अलग ही करना है, आप देखें, और संदेश को वैसे ही लाना है जैसे वहाँ है, लेकिन वे बाहर के कार्य क्षेत्र में एक मशीन को लगाएं या जो कुछ भी हो, या इन टेपों को सही प्रकार से लेंगे और एक सही टेप को बनाएं और हर एक टेप वापस चलाकर और भेजने से पहले जांच करें, या तो बस पूरी चीज को रोक दें, यहाँ तक कि कुछ करो भी मत, हर व्यक्ति को अपने लिए खुद टेप बनाने दो, समझे। लेकिन इसे ठीक से किया जाए, देखो, जिससे यह शिकायत बंद हो जाए। हम बिल्कुल भी कोई शिकायत को नहीं चाहते हैं। यदि एक शिकायत होती है, इस पर ध्यान देंगे, तब हम इसे खत्म कर सकते हैं। अब मैं जितनी जल्दी हो सके बस उतना ही जल्दी करूंगा। बिल्ली के पास यहाँ लगभग दो सवाल हैं या तीन, फिर हम समाप्त कर देंगे। भाई ब्रैनम कब तक एक डीकन कलीसिया में व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए या रख सकता है? क्या हमें व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए या तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक भाई नेविल हमें नहीं बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? ये भाई नेविल का काम नहीं है, ये आपका काम है, समझे। आपको भाई नेविल को नहीं बताना है कि क्या प्रचार करना है, इसे कैसे करना है। देखो, वह आपका काम है, आप जो डीकन है आप ऐसा करना चाहिए, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। भाई नेविल का कुछ लेना देना नहीं है, ये आपका काम है, देखा। अब यदि कोई पुलिसकर्मी यहाँ रास्ते पर है और वो एक व्यक्ति को कार के पीछे से कोई चीज को चोरी करते देखता है, क्या उसे मेयर को फोन करके और कहना चाहिए, अब मेयर आदरणीय श्रीमान, मैं यहाँ आपके लिए इस पुलिसकर्मी में काम करता हूँ, अब मैं यहाँ सड़क पर एक व्यक्ति को देखा है, वो कल रात एक कार से कुछ टायर चोरी करके निकाल रहा था, अब मैं सोचता हूँ कि उसके बारे में आपकी क्या राय है, समझे। देखिए, यह समझदारी की बात नहीं होगी, क्या ये होगी? नहीं श्रीमान, यदि वो कुछ तो गलत कर रहा था तो उसे गिरफ्तार करें, और यदि कोई व्यक्ति यहाँ कलीसिया में कुछ तो गलत कर रहा है या कोई भी हो, उन्हें रोके, उनसे बात करें, अभिमानी न बने, लेकिन यदि वे नहीं सुनते हैं, इस तरह से बात करें जिससे वे समझें कि आप क्या बोल रहे हैं। देखा, देखो, जैसे आप एक बच्चे को बताते हैं, कहते हैं वहाँ पीछे जाओ, और वह दुर्व्यवहार कर रहा होता है, डीकन लोग अपने स्थान पर रहें, आप यदि चार डीकन हैं, दो सामने रहें, दो पीछे रहें, इन कोनों पर या कहीं पर भी, और बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि स्वधर्म त्यागी और बाकी कोई भी इस तरह से अंदर आता है, आप देखें, और आपको पहरे पर होना है, आपको अपने कर्तव्य पर रहना है और वही बने रहें, यही आपका स्थान है, या दीवार के उस ओर खड़े रहें और अंदर आने वाले हरेक पर ध्यान दें। एक डीकन परमेश्वर के भवन की देखभाल करता है, कोई अंदर आता है तो उनसे बात करें, वहाँ उनका अभिवादन करने के लिए रहें, उनसे हाथ मिलाएं, ऐसा ही है। आप पुलिसकर्मी हैं, क्या हम आपको सामान रखने का कक्ष दिखा सकते हैं, या क्या आप बैठेंगे, क्या हम आपको एक गीत की किताब या कोई चीज दे सकते हैं, या अब हम चाहते हैं कि आप यहाँ खुद से आनंद लें और प्रार्थना करें, और आपके आज रात यहाँ पर होने से हम खुश हैं, उन्हें सीधे एक स्थान की ओर अगुवाई करें और कहें, क्या आप नजदीक बैठना चाहते हैं या वहाँ पीछे बैठना पसंद करेंगे, या जो कुछ भी और है, यही मेहमानदारी है। एक पुलिसकर्मी या डीकन सेना के लिए एक सैन्य पुलिस है, शिष्टाचार से, लेकिन फिर भी अधिकार के साथ होता है, समझे। आप जानते हैं कि वास्तव में एक सैन्य पुलिस क्या होता है। यदि वह अपने अधिकारों का पालन करता है तो मैं सोचता हूँ कि वह बस एक धर्माधिकारी की तरह होता है, आप समझे। वह पूरी तरह से शिष्टाचार और इत्यादि होता है, लेकिन फिर भी उसके पास एक अधिकार होता है। देखो, आपको उसका ध्यान रखना ही है। देखो बाहर वे लोग आवारागर्दी करने वाले और जो नशे में होते हैं, क्योंकि वह उन्हें एक स्थान पर रखता है। अब वैसे ही डीकन को भी उन्हें उनके स्थान पर रखना है। अब याद रखें, डीकन एक पुलिसकर्मी है और एक डीकन का कार्य स्थान वास्तव में कलीसिया के किसी भी कार्य स्थान की तुलना में अधिक सख्त है। मैं नहीं समझता कोई भी कार्य स्थान डीकन के कार्य स्थान की तुलना में अधिक सख्त है। ये सही बात है, क्योंकि उसके पास एक वास्तविक काम होता है और वो एक परमेश्वर का जन है। वह उतना ही परमेश्वर का जन है जितना पाशर परमेश्वर का जन होता है। निश्चित रूप से वो है, वो परमेश्वर का सेवक है। अब खजांची केवल एक चीज, वे परमेश्वर के द्वारा उस कर्तव्य के नीचे होते हैं कि उस आर्थिक बातों को देखें और उसका ध्यान रखें जो चीजें उस तरह से चलती हैं। मैंने उनके बारे में आपको टेपों के बारे में बताया और यहाँ दूसरी चीजों के बारे में जो होती है, भवन के लिए और मरम्मत के बारे में और आर्थिक और दूसरी चीजों को लेकर और इत्यादि, इसी के लिए ये खजांची होते हैं। कलीसिया की संपत्ति, आर्थिक और इत्यादि के लिए डीकन का उनमें कुछ भी लेना देना नहीं है और ना ही खजांची का डीकन के कार्य स्थान से कोई लेना देना है। अब यदि डीकन खजांची से किसी भी चीज की सहायता मांगना चाहते हैं, या खजांची, वे डीकन और आप सभी एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन यही आपके कर्तव्य हैं जो अपने अपने स्थान पर हैं, समझे, तो ठीक है। अब नहीं, भाई नेविल से मत पूछिए। यदि भाई नेविल आपसे कुछ तो करने के लिए कहते हैं, तब वो आपके पास्टर हैं, शिष्टाचार और प्रेम से और सारी चीजों के साथ। यदि वह कहते हैं भाई कॉलिंस, भाई हिकर्सन, भाई टोनी या कोई, तो क्या आप देखेंगे कि वहाँ पीछे उस कोने में क्या गलत है? इस तरह के कर्तव्य के पद पर एक वास्तविक परमेश्वर के जन के रूप में इसे करना है, आप जानते हैं। याद रखें, आप ब्रैनम टैबरनेकल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ना ही भाई नेविल या मेरे लिए काम कर रहे हैं, आप यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं, समझे। आप इसी के लिए हैं और वह आपकी वफादारी का आदर करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे वो उस पास्टर या किसी और के प्रति करता है। वह आपसे वफादारी की आशा कर रहा है और हम अपनी वफादारी को दिखाना चाहते हैं। अब कभी कभी यह कठिन होता जाता है, मेरे लिए एक सेवक को उस तरह से देखना कठिन लगता है जो वहाँ बैठा रहता है। मैं अपने पूरे हृदय से प्रेम करता हूँ, बस उसे वास्तव में बताना, देखो, लेकिन इस तरह प्रेम से मुझे उसकी ओर सहायता के लिए हाथ बढ़ाना है। लेकिन देखो, और वे मेरे पास आकर और कहते हैं, भाई ब्रैनम, आप बस एक बहुत ही भले मनुष्य हैं, आप बस क्यों नहीं उस बपतिस्मा पर या इसमें या उस पर इत्यादि में जरा सा भी समझौता नहीं करते और उस सुरक्षा और सर्प के बीच पर समझौता नहीं करते। मैं कहता हूँ, भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन आओ अब हम वचन को लेंगे और देखेंगे कि कौन सही है या गलत है। देखिए, मैं इस बात के लिए बने रहना चाहता हूँ। ओह, अब भाई ब्रैनम, मैं आपको बताता हूँ, आप पूरी तरह से गलत हैं। देखो, ये ऊपर से चला जाता है। ओह, मैं कहता हूँ ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ। फिर यदि मैं गलत हूँ तो निश्चित रूप से, और आप मुझे बताएं, आप जानते हैं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, तो आप मुझे दिखाओ कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। देखो, वही बात को वे कहते हैं, आपका कोई काम नहीं है कि उस बच्चे को बैठने के लिए कहें। अब वो डीकन परमेश्वर के भवन में वो संरक्षक है, समझे। अब यदि आप, वह परमेश्वर की भवन की देखभाल करता है और उसे व्यवस्था में बनाए रखना है, यही है जो वचन कहता है। और यदि आपके पास कुछ और भी है कि डीकन को करना चाहिए, आप आकर मुझे बताएं। देखो, वही बात है, लेकिन ऐसा करना आपका कर्तव्य है। जी हाँ, केवल समर्थन करें, और आपको किसी से भी यह नहीं पूछना चाहिए, यह बस आपका कर्तव्य है। भाई नेविल को किसी से नहीं पूछना है, कलीसिया को नहीं पूछना है, मेरा मतलब है उन खजांचियों को भाई नेविल से यह पूछने की आवश्यकता नहीं है क्या वह भवन के ऊपर छत को डाल सकता है, समझे। नहीं नहीं, भाई नेविल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, यह तो आप पर है, डीकन को नहीं, उसी तरह से पास्टर के लिए है। आप किस बात पर प्रचार करने जा रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि आप इसे करें, उनका ऐसा करने का कोई काम नहीं है, वो परमेश्वर के नीचे है, देखो वो उनका पास्टर है। और फिर यदि भाई नेविल वो एक संदेश को प्रचार करते हैं जिसे प्रभु ने हमारे लिए दिया है और हम सब इसमें एक साथ हैं, और यदि मैं भाई नेविल को कुछ तो गलत कहता हूँ, तो इसका उत्तरदायी होने के लिए परमेश्वर मुझे रोक देता है, यह सही बात है, देखा। इसलिए परमेश्वर इस सब का नियंत्रण करने वाला है, देखा, और हम तो सिर्फ उसके राजदूत के नाई काम कर रहे हैं। आप देखो यहाँ पर इन कार्य स्थान में, कृपया अगला सवाल, और फिर मैं सोचता हूँ कि हमारे पास एक और है और फिर हम रोक देंगे।
प्लीज एक्सप्लेन,
कृपया बताएं तब अन्य भाषा के दान को हमारे कलीसिया में कैसे संचालित करना है। मैंने इसे बताया है, कलीसिया को कब व्यवस्था में रखा जा सकता है, जैसे या कहां पर दानों को करना है। हमने अभी इसे समझाया है।
जस्ट हाउ मेनी सी एच आर आई एस टी एम ए,
बस कितने सी एच आर आई एस टी एम ए, क्या आप देख सकते हैं कि ये क्या है?
ओह,
वाद्य उपकरण कलीसिया में ऑर्गन और पियानो के अलावा हमारे पास कितने वाद्य उपकरण होना है? अच्छा, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास एक तार वाली बैंड या जो कुछ भी आपके पास है। मैं नहीं जानता कि आपके पास क्या है, इसका क्या मतलब है, मैं नहीं जानता इसे समझने के लिए, लेकिन ऑर्गन और पियानो कलीसिया की संपत्ति है। अब यदि गीतों की अगुवाई करने वाला उस नाल को और एक प्रकार की तुरही को इसी तरह की चीजों को होने का विचार रखता है और कोई तो कलीसिया में आकर और उन वाद्यों को बजाता है और वे एक संगीत मंडली में है और फिर अवश्य ही तो ये आपके खजांचियों पर है कि खजांचियों के सामने इस बात को रखे और देखे कि क्या उनके पास उनके उपकरणों को खरीदने और इत्यादि को खरीदने के लिए पैसे हैं या जो भी है जो इस तरह से है। मुझे लगता है कि उनका सवाल यही है। लेकिन यदि उनके पास उनके खुद के वाद्य उपकरण हैं तो अच्छी बात है। यदि उनके पास उनके खुद के वाद्य उपकरण नहीं है और वे एक संगीत मंडली के सदस्य हैं, न ही ऐसा ही कोई व्यक्ति यहाँ पर उठकर आ जाता है और कभी तो एक बार बजाता है और इस तरह से उठकर चला जाता है, ये कलीसिया में एक संगीत मंडली होना है। कलीसिया एक तुरही को उस व्यक्ति के लिए नहीं खरीदेगा जो इसे यहाँ पर बजाए और कल कहीं और बजाए और फिर कहीं और कभी तो एक बार आकर और कुछ देर बजाए। नहीं श्रीमान, यह एक संगीत मंडली होना है, संगठित संगीत मंडली जो उसकी अगुवाई करने वाले के साथ होता है और फिर कलीसिया उनसे उपकरण को खरीदने के बारे में बात करे।
प्लीज एक्सप्लेन जस्ट हाउ वी आर टू हाउ वी डीकन्स कैन,
कृपया समझाएं अब हम डीकन लोग कैसे आराधना स्थल में पहले या बाद में लोगों को खड़े, कृपया समझाएं। ओह, तो ठीक है, मैं ये सुझाव दूंगा भाइयों, अब एक बहुत अच्छी बात है। काश हमारे पास इस पर बोलने के लिए और अधिक समय होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ तो महत्व रखता है। देखो, अब कलीसिया ना एक, यदि आप चाहते हैं, यदि आप इस टेप को किसी रात को चलाना चाहते हैं और सभाओं से पहले इसे चलाएं ताकि लोग समझें, इसे चलाया जाए, केवल टेप का यह हिस्सा, लेकिन और अधिक नहीं, केवल इसे ही चलाएं। इसके कोई भी भाग को जिसे आप एक निश्चित चीज के लिए चलाना चाहते हैं, बस इसे तब तक चलाते रहें जब तक आपको वो बात मिल नहीं जाती है और फिर इसे चलाएं। देखें, क्योंकि ये सवाल है। अब कलीसिया के डीकन, जैसा कि मैंने कहा, कलीसिया के वे पुलिसकर्मी हैं, लेकिन कलीसिया आपस में मिलने और मित्रता के लिए और खिलवाड़ के लिए सामान्य मिलने का स्थान नहीं है। कलीसिया परमेश्वर का आराधना स्थल है। हम यहाँ पर आते हैं। अब यदि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं तो मैं आपके घर पर आऊंगा, आप मेरे घर पर आएं, या आप एक दूसरे के घर पर जाएं और एक दूसरे से मिलें। लेकिन कलीसिया के माध्यम से यहाँ वहाँ ऐसे ही खिलवाड़ करना और बातचीत करना और इस तरह की बातों के लिए यह ठीक नहीं है। भाइयों, हम यहाँ पर आते हैं, हमें अपने मन से सारी चीजों को निकाल देना है। यदि हम यहाँ आते हैं, उसे देखें, जिस तरह से हम वर्षों पहले से करते आए हैं। बहन गर्टी पियानो को बजाती थी जब मैं यहाँ पास्टर का काम करता था। मुझे पास्टर, डीकन, खजांची, हर एक चीज एक ही समय पर सब कुछ करना पड़ता था। देखो, लेकिन मुझे इसे करना था। अब आपको इस तरह से नहीं करना है, देखो, क्योंकि इसका पालन करने के लिए अभी आपके पास लोग हैं। लेकिन जब मेरे पास हशर थे, भाई सेवाट, और वे सारे दरवाजे पर रहते थे, दरवाजे पर उनके पास किताबों का ढेर होता था, वे कुर्सी पर बैठे होते थे या कुछ तो और जब कोई अंदर आता था तो आप उन्हें अपने कोट को टंगाने के लिए स्थान दिखाते थे या उनकी कुर्सी पर बैठाने के लिए उनकी सहायता करते हैं, उन्हें गीतों की किताब देते और उन्हें कहते कि प्रार्थना में रहें, और फिर हर कोई अपनी कुर्सी पर बैठकर और आरंभ होने के समय तक शांति से प्रार्थना करता, समझे? और फिर शुरुआत के समय पर पियानो वादक बहन गर्टी वहाँ जाती और संगीत को बजाना आरंभ करती जब लोग एक साथ अंदर आ रहे होते। मैं आपको सुझाव को देना चाहूँगा कि आपका ऑर्गन वादक वहाँ पर होना है कुछ वास्तविक अच्छे संगीत के साथ। यदि वो यहाँ नहीं हो सकता है तो टेप को रखकर और फिर इसे चलाएं या कुछ तो और संगीत वास्तविक मधुर पवित्र संगीत चलने दें। सो लोगों से कहें और यदि वे लोग बात करते हैं और इस तरह से बात करते ही जाते हैं, उनमें से एक डीकन माइक्रोफोन में ऊपर जाए और कहे इस तरह से कहें, यहाँ इस भवन पर हम चाहते हैं कि आप आराधना के लिए आएं, अब आवाज न करें, संगीत को सुने, अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं, सुशील बने रहें, देखें, प्रार्थना करें या बाइबल पढ़ें। आप यहाँ के आराधना के स्थान में हैं जहाँ प्रभु वास करता है और हम चाहते हैं कि हर कोई वास्तविक सुशील बना रहे और आराधना करे, न ही यहाँ वहाँ दौड़े, न ही सभा होने से पहले बात करे, अपने आप को एकत्र करे और आप प्रभु से बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, समझे? या तो मौन में प्रार्थना करें, देखो, या अपनी बाइबल को पढ़ें। जब मैं वहाँ संगमरमर की कलीसिया में गया, नॉर्मल विंसेंट पील, आपने इसके बारे में सुना होगा, आप देखे, और मैं उस बड़े मनोवैज्ञानिक शिक्षक के पास चला गया, आप जानते हैं, और मैं उसकी कलीसिया में गया। मैंने तब वहाँ सोचा, मेरी इच्छा थी कि मेरा भवन फिर इसी तरह से करे। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, डीकन दरवाजे पर खड़ा होता है, वे अवश्य ही आपको एक संडे स्कूल की पर्ची सौंपते हैं, आपको अंदर ले जाते हैं। उन्हें कलीसिया को 3 बार खाली करना पड़ता था, आप जानते हैं, इनमें केवल लगभग 400 या 500 लोग समाते हैं, आप जानते हैं, और ये न्यूयॉर्क का एक बड़ा स्थान है और वह एक लोकप्रिय मनुष्य है। और मैं सोचता हूँ उनका एक वर्ग 10 बजे और दूसरा वर्ग 11 बजे, एक ही उपदेश बार बार, बिल्कुल उसी सभा में एक ही कागज पत्र होता है। लेकिन जब वे समाप्त कर देते हैं, वे डीकन, मैं सोचता हूँ कलीसिया के लिए ठीक 5 मिनट लेते हैं और दूसरे अंदर नहीं आ सकते हैं जब तक पहले के लोग बाहर नहीं चले जाते, तब डीकन रास्ते को खोलते हैं और दूसरी कलीसिया भर जाती है। उनके पास ये पुरानी बॉस की जैसी बैठने की सीटें हैं, आप जानते हैं, वे इस तरह से अंदर आते हैं और जब आप दरवाजा खोलते हैं, वे वहाँ कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। पुराना फैशन, ये ठीक 200 वर्ष से वहीं पर ही खड़ा है। मैं सोचता हूँ ये पुराने संगमरमर की कलीसिया है और आप उस कलीसिया में कहीं भी एक पिन के गिरने की आवाज को भी सुन सकते हैं। और हर एक जन कम से कम 30 मिनट प्रार्थना में रहता है इससे पहले ऑर्गन बजाने वाला अपनी पहली धुन को बजाए, आरंभिक संगीत, समझे? और बस हर एक जन प्रार्थना में होता है। मैंने सोचा यह कितनी शानदार बात है। फिर जब वो सेवक वो आरंभ करता है, लगभग मैं सोचता हूँ कि वे लगभग 3 या 5 मिनट के लिए एक आरंभ में ऑर्गन बजाते हैं, तो कितना महान है, या ऐसे ही कुछ इस प्रकार से। और फिर जब वे ऐसा करते तो हर कोई प्रार्थना करना बंद करता, वे हर एक जन आरंभिक संगीत को सुनते। देखो, ये बदलाव को लाता है प्रार्थना से आरंभिक संगीत में। और तब जब वे ऐसा करते तो झुंड की गीतों की अगुवाई करने वाला झुंड का निर्देशित करता, फिर उनके पास एक समूह गीत होता और झुंड का गीत होता था, और फिर वे तैयार थे उनके संडे स्कूल की क्लास के लिए, देखा? और फिर जब ये पूरा होता, हर समय दिव्य आराधना के अलावा कुछ भी नहीं होता था, और ये ऐसा है जिसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। और मैं सोचता हूँ कि ये एक अच्छी बात होगी यदि हमारी कलीसिया, और मैं तो बस ये बता रहा हूँ, हम पहले से ही हम इसे करें, समझे? आओ इसे करें। यदि कोई कुछ भी करता है और ये कहता है, मैं सोचता हूँ कि यह एक अच्छी बात होगी, यदि यह एक अच्छी बात है तो इसे करें, समझे? हम किसी भी अच्छे काम को छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी हो हम इसे करेंगे, देखा? और बस आगे बढ़े और वहाँ खड़े रहें। और यदि वे सुबह को आरंभ करते हैं या ऐसा ही कुछ, आने वाले जो लोग हैं, तब कोई तो या डीकन में से कोई एक या कोई तो व्यक्ति वहाँ पर जाए और कहे, यह यहाँ इस भवन में एक नियम बना दिया गया है। मैं नहीं जानता कि यदि वे इसे करते हैं तो वे कर सकते हैं। मैं यहाँ कभी भी नहीं होता हूँ, आप देखो, मैं नहीं जानता, मैं सभाओं से पहले कभी भी यहाँ पर नहीं होता हूँ। और जब वे अंदर आते हैं और वे बात करने लगते हैं, तो कोई तो वहाँ ऊपर जाकर कहे कुछ क्षण के लिए, समझो? तो एक छोटी बहन, वो वहाँ पर जाए और वो जाकर उस संगीत को बजाए। यदि आप नहीं करते हैं तो टेप को डालकर और इसे चलाएं, देखो, जो ऑर्गन का संगीत है, और कहें, अब हम भवन में एक नया नियम लागू कर रहे हैं। जब लोग यहाँ प्रवेश करते हैं, हमें फुसफुसाना नहीं है, बात नहीं करना है, लेकिन आराधना करना है, समझे? अब बस कुछ ही मिनटों के बाद सभा आरंभ हो जाएगी, तब तक के लिए बस या तो अपनी बाइबल पढ़ें या सिर झुकाकर शांति से प्रार्थना करें, और इसी तरह से कुछ समय करें, वे सभी सीख जाएंगे, समझे? देखा, आप किसी को तो बात करते हुए सुनते हैं, तब यदि वह कुछ देर तक बात करता रहता है, बार बार ऐसा होने के बाद थोड़ी देर के बाद आप उस स्थान पर जाएं, कहें देखो कोई तो बात कर रहा है, देखो कोई और बात नहीं कर रहा है, आप देखें, तो ठीक है। फिर एक डीकन ऊपर जाकर कहे, हम चाहते हैं कि आप सभा के समय के दौरान आराधना करें। आप समझे, देखा, देखो ये बात करने का भवन नहीं है, यह एक आराधना का भवन है, समझ गए। मैं सोचता हूँ ये ऐसा ही था, कृपया समझाएं। जी हाँ, आइए देखते हैं। जी हाँ, कृपया समझाएं कि कैसे डीकन को भवन में करना चाहिए। जी हाँ, बस ऐसा ही है, ये सही है, ये इसी तरह से है, तो ठीक है। अब यहाँ ये अंतिम है,
opportunities on the beginning of the service. We've had complaints. It's wrote real little. Had complaints.
भाई ब्रैनम, जब हमारे पास सभा के आरंभ में अवसर थे, मैं हूँ, हमारे पास शिकायतें थी, ये बहुत कम लिखा है, और शिकायतें थी, क्या ऐसा नहीं है? सभा के आरंभ में शिकायतें थी, हमारे पास, आइए देखते हैं, हमारे पास गीत होते हैं, गवाहियां और प्रार्थना, और प्रार्थना की विनतियां और विशेष गीत का गायन होता है, और हो सकता है संदेश में 11 बज जाते हैं इसे करने के लिए, या उसके बाद में, उसके वचन के लिए बहुत अधिक समय नहीं होता है। कुछ लोग तो बेचैन हो जाते हैं और इससे पहले ही छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें छोड़कर जाना पड़ता है इससे पहले समाप्त हो।
प्लीज एक्सप्लेन हाउ मेनी सॉन्ग्स एंड व्हाट टाइम टू स्टार्ट द मैसेज एंड सम टाइम वी हैव प्रेयर।
ये कृपया समझाएं कि कितने गीत होने चाहिए और किस समय पर संदेश को आरंभ करें और किस समय पर हमारे पास प्रार्थना की विनती होनी है और एक गवाही के लिए कब हमें समाप्त करना है। कुछ चीजें जो नहीं उस समय पर सही नहीं दिखाई देती हैं। अब मैं आशा करता हूं कि मैं इसे समझ गया। बिली यहां मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। टेप पर आप होते हैं, सभा में कोई तो सुन रहा है कि ये क्या था। बिली मुझे इसे पढ़ने में सहायता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं इसके सामान्य अभिप्राय को समझ गया। ये ऐसा है कि सभा आरंभ करने से पहले हमें कितने गीत को गाना चाहिए और किस समय पर सभा को आरंभ करना चाहिए। अब पहली बात मैं जो यहाँ करना चाहता हूँ वो एक अंगीकार करना है, और जब मैं गलत होता हूँ मैं स्वीकार करना चाहता हूँ मैं गलत हूँ, समझे। और मैं यहाँ एक अंगीकार को करूँगा कि मैं उस तरह का अगुवाई करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं ही हूँ जो लंबे समय तक इन सभाओं और बातों को करता रहता हूँ, जो कलीसिया के लिए हमेशा का नियम बन गया है। देखो ऐसा करना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब याद रखना, मुझे आप सभी को बता रहा था रविवार की रात, यदि प्रभु ने चाहा तो रविवार की रात को, कि मैं इसके बाद अपनी सभा को बांटने की कोशिश करूंगा। यदि मुझे एक सप्ताह अतिरिक्त इसमें रहना होगा तो, जो लगभग मेरी सभाओं के लिए 30 या 40 मिनट लंबी होगी, क्योंकि मैंने यह देखा है कि एक सभा जब आप इसे जोर देते हैं और संदेश सामर्थ्य में दिया जाता है, यदि आप बहुत ही लंबा जाते हैं तो आप लोगों को थकाकर बाहर करते हैं और उन्हें ये नहीं मिलता है। जिस कारण से मैं ये दे रहा हूँ, मैं साथ ही इस बात को जानता हूँ, समझे। सबसे सफल प्रचारक वो है जो वास्तव में यीशु कुछ ही शब्दों का व्यक्ति था। उसके उपदेश को देखें, पौलुस के उपदेश को देखें, पेंटिकॉस्ट के दिन शायद उसने 15 मिनट का ही लिया होगा, और उसने वहाँ कुछ ऐसा उत्तेजित किया जिसने परमेश्वर के राज्य के अंदर 3000 प्राणों को भेज दिया। देखा, बिल्कुल सीधा सीधा उसी बात को लाया। देखा, और मैं दोषी हूँ, क्योंकि कारण मैंने ऐसा किया है इसलिए नहीं कि मैं फर्क को नहीं जानता, लेकिन मैं टेप को बना रहा हूँ, देखता हूँ, और ये टेप घरों में घंटों 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 तक चलाई जाएगी। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे आने वाले रविवार, जिस कारण से मैंने इसे किया है, इस आने वाले रविवार को जिस कारण से मैंने इन चीजों को किया है, मैं इसे ठीक अभी टेप पर कह सकता हूँ। मैंने जो किया है उसका कारण ये है, क्योंकि इस घड़ी के संदेश के लिए मुझ पर ये जबरदस्त बोझ है, ताकि आपके पास इस संदेश को पहुँचाऊँ। अब संदेश जा चुका है, अब मैं 30 मिनट या ऐसे ही कुछ लूंगा। पहले वर्ष के बाद बाहर मेरी सभाओं में मैं हर स्थान पर जाता हूं और कोशिश करता हूं, और यहां तक कि अपनी घड़ी को 30 मिनट के लिए बनाकर रखता हूं या 40 मिनट से अधिक नहीं, उस संदेश से उभारें और वेदी की बुलावट को करें, यदि मैं या जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, या एक प्रार्थना की पंक्ति को करें, और इतना समय न लें, क्योंकि आप लोगों को थका देते हैं। मैं ये जानता हूँ, लेकिन यहाँ देखें, मैं सोचता हूँ वर्ष में हमारे पास एक दर्जन लोग भी ऐसे नहीं थे जो उठकर और बाहर चले गए हों, और कभी कभी मैं उन्हें दो या तीन घंटे तक यहाँ रोके रखता हूँ। देखा, ये सही बात है, क्योंकि ये इन टेपों को बनाते आ रहे हैं जो सारे संसार में जाते हैं। देखो, और जो लोग वहाँ बाहर हैं, वे घंटों तक बैठकर और इसे सुनते हैं, सेवकगण और इत्यादि, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका, एशिया, हर जगह, देखो वे इसे सुन रहे हैं। लेकिन देखो, आराधना स्थल के लिए, कलीसिया के लिए देखें, और ये ठीक बात है, यदि आप यहाँ एक टेप को बना रहे हैं तो, और आपके पास दो घंटे का खाली टेप होता है तो उस पर दो घंटे के संदेश को डालें। लेकिन यदि आप ऐसे ही किसी चीज के लिए टेप को नहीं बना रहे हैं, तब अपने संदेश को छोटा कर दें। देखें, अपने संदेश को छोटा करें। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कुछ तो सीधा बताते हैं, कुछ लंबा संदेश देते हैं। देखें, ये इसी प्रकार से है, और आपको उसके बीच में आनंदमय स्थिति में होना है। और अब बहुत सी बार हम अपनी सभा को एक गवाही सभा के घसीटने के द्वारा बर्बाद कर देते हैं, जो मैं जानता हूं कि मैं ऐसा करने का दोषी हूं। और आप बाहर निकलकर जब रास्तों में सभाओं को करते थे और किसी पुराने भाई को वहां खड़ा कर देते थे, और वो वहां खड़ा होकर और उसे कुछ शब्दों की प्रार्थना करने के लिए कहते, और वह शहर के मेयर, राज्य के राज्यपाल के लिए प्रार्थना करेगा, और संघ के राष्ट्रपति के लिए, और इसी तरह से हर किसी के लिए, और आसपास के सभी पास्टर के लिए, आप जानते हैं, हर किसी के लिए बारी बारी से। और बहन जोन्स जो अस्पताल में है, और इसी तरह की चीजें, और लोग जो वहाँ पर खड़े हुए होते हैं रास्ते की सभाओं पर, वो निकलते जाते हैं, बस निकलते जाते हैं, समझे, वे उन्हें थकाकर बस निकाल देते हैं। हम अभी हालांकि देखिए, अब मुख्य बात ये है कि आपकी प्रार्थना गुप्त में होना है। मुख्य बात, लंबी प्रार्थना को गुप्त में होना है। सबके लिए प्रार्थना करें, एक गुप्त कोठरी में प्रवेश करें, दरवाजा बंद करें, वहीं पर जहां पर सारा दिन, सारी रात या दो घंटे प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करें। लेकिन यहाँ पर जहाँ आपको लोगों का ध्यान रखना है, आपकी प्रार्थना को छोटा करें, इस पर जल्दी करें, अपनी सारी सभा को और आपकी सभा का अधिकांश समय उस वचन के अंदर डालें। यही मुख्य बात है, वचन पर जोर डालें, जितना जोर आप डाल सकते हैं। देखो, लोगों को वचन को पहुँचाएं। अब यहाँ मेरा सुझाव है, अब याद रखना, मैंने इस बात को अंगीकार किया है कि मैं इस पर आगे ले जाने का दोषी हूँ, लेकिन तब मैंने आपको बताया था कि मैंने इस पर ज्यादा क्यों किया है। मैं दो घंटे की टेप बना रहा हूँ, जिससे विदेशों में और हर जगह एक संदेश को भेजा जाए, आप देखें। लेकिन कलीसिया को इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। संदेश जो यहाँ भवन के लिए प्रचार होते हैं, उन्हें टेप करने के बाद दो घंटे का, और ये टेप जगह जगह पर जाने के लिए होते हैं, देखो, और इस प्रकार से भी बाहर जाते हैं। अब यहाँ आपकी जो व्यवस्था है, मैं आपको केवल एक उदाहरण को दूंगा, क्या ये ठीक होगा, एक सुझाव को दूं? मैं कहूंगा कि कलीसिया को चाहिए इसके दरवाजे खोलने का समय निर्धारित किया जाए, जिससे सभा के लोग अंदर आएं, संगीत को बजाया जाए और हर कोई आकर आराधना करे, ना ही भेंट करने के लिए, ना ही बाद में उन्हें भेंट करने दें। उन्हें कहें समाप्त करें और बाहर जाएं, भेंट न करें। यदि आप भेंट करना चाहते हैं तो वहां ठीक बाहर की ओर जाएं, लेकिन यह आराधना का स्थल है, इसे स्वच्छ बनाए रखें। अब यदि प्रभु का आत्मा यहाँ काम कर रहा है, प्रभु के आत्मा को बनाए रखें, देखा, और ये मंडराता रहेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बस मेरे शब्दों को लिख कर ले लें, ये छोड़कर चला जाएगा, निश्चय ही ऐसा होगा। और हम इसे बनाए रखें, यह हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं आज रात यहाँ पर हूँ, बस इन चीजों को, इन व्यवस्थाओं के साथ साथ बनाए रखें। अब देखो, मैं इसे कहूंगा, आमतौर पर जब तक हम विशेष करके बाहर नहीं भेज रहे हैं और उन्हें बताएं कि आप एक संदेश को टेप करने जा रहे हैं, समझे। अब यदि भाई नेविल के पास यहाँ पर एक संदेश होता है जो वह देने जा रहा है, उसके पास एक संदेश है जो वह लोगों के लिए देना चाहता है टेप पर या कुछ तो, और कहता है अब अगले रविवार की रात को हम दो घंटे के टेप को टेप करने जा रहे हैं, तीन घंटे का टेप या कितना भी हो, हम दो घंटे का एक टेप करने जा रहे हैं या कितना भी हो सकता है, अगले रविवार की रात, और तब लोग जान जाते हैं। और फिर जब ये संदेश आते हैं, कहते हैं अब हम आज रात को एक संदेश को टेप करेंगे, और मेरे पास आज रात एक संदेश है जिसे हम टेप करके बाहर भेजना चाहते हैं, मुझे इस संदेश को बाहर भेजने के लिए अगुवाई हुई है, और इस टेप को किया जा रहा है, या दो घंटे, तीन घंटे का हो सकता है, या जो कुछ भी है इसे बताएं। लेकिन आमतौर पर बस जैसे मैं करता हूं, जब मैं किस स्थान पर जाता हूं, जैसे कि उनमें से एक बिजनेसमैन की सभा, या मैं अपनी सभाओं में वहां बाहर जाता हूं प्रार्थना पंक्ति के लिए। यदि मैं वहाँ एक रात खड़ा होकर और 3 घंटे का संदेश देता हूँ जंघाई सभा से पहले, आप देखें यह मुझे कहाँ पर रखता है। देखा, क्योंकि अगली रात को आपके सभा के लोग जो थे उससे भी आधे हो जाते हैं। देखा, क्योंकि वे ऐसा नहीं कर सकते, उन्हें काम और इत्यादि करने के लिए जाना होता है। मैं ये सुझाव देता हूँ कि आमतौर पर, अब मैंने भाई नेविल को कल रात को देखा जब उससे प्रचार किया। अब मैं जानता हूँ कि हम सभी जानते हैं कि यह एक चौंकाने वाला संदेश था। मैंने उसे लिखकर रखा, इसे अपनी जेब में इस बात को रखा है, इसे मेरे अपने खुद के संदेशों में उपयोग करने के लिए। ये सही बात है, उन्होंने संदेश दिया बाहर निकलने का मार्ग। देखो, और यह एक अद्भुत संदेश था। आपने देखा उसने कितनी जल्दी उसमें से बताया। देखो, लगभग 35 मिनट में, देखा, उसने पूरा किया था। देखा, अब ये ठीक था। अब और भाई नेविल, अक्सर उनके संदेश ऐसे ही होते हैं। देखो, ये इतने लंबे नहीं होते हैं। देखा, लेकिन जहां आप अपनी सभाओं को ठंडा कर देते हैं उन सारी चीजों को करने से, इससे पहले कि आप अपनी मुख्य बात तक पहुंचें। देखा, और आप जो यहां ऐसे करते हैं, अब मैं जानता हूं। और अब देखो, मैं ये अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप जो खजांची हैं या डीकन हैं या पास्टर, लेकिन मैं तो केवल आपको बता रहा हूं। देखो कि सच्चाई क्या है, और यही है जिसे होना अवश्य है। अब ये क्या करता है, अब हर एक जन, आप सब अच्छे स्वभाव के लोग हैं, आप में से हर एक व्यक्ति अच्छे स्वभाव का है। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं कहता हूँ सभी सिवाय भाई फलाना फलाना के उसका अच्छा स्वभाव नहीं है, हम सभी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आपके पास अच्छा स्वभाव है और आप धीरजवंत हैं, सज्जन हैं, शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं, यह ठीक बात है। लेकिन उसके साथ एक डरपोक मत बनो। यीशु भी एक अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन जब बातों को बोलने का समय आया, ऐसा लिखा है, मेरे पिता का घर प्रार्थना के लिए बना है और तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। समझे, देखो, वो जानता था कि उसे कब बोलना है और कब नहीं। यह वही है जो मैं करना है। देखा, वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था, यीशु के जैसा वहाँ कोई व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर था। और याद रखना, वो यहाँ तक कि कलीसिया में एक डीकन के होने के बारे में बात करते हैं, उसने पदभार को संभाला, उसने कुछ रस्सियों को एक साथ रखा और वो रुका नहीं कि उन्हें वहाँ धीरे धीरे करके बाहर निकाले, उसने उन्हें मार भगाया। देखो, परमेश्वर के घर के होने के नाते, और वो डीकन की भूमिका को निभा रहा था। आपके उदाहरण के लिए जो डीकन है, देखो, वो आपका उदाहरण था। और अब यह लिखा है, मेरे पिता का घर प्रार्थना के घर के लिए बना है। अब याद रखें, यीशु तब एक डीकन था। आप जानते हैं, यीशु एक डीकन की भूमिका को निभा रहा था। जब वो एक पास्टर की भूमिका करने आया तो उसने क्या कहा, तुम अंधे फरीसियों, अंधों के अगवा हो। देखो, तब वो एक पास्टर की भूमिका को कर रहा था। और जब उसने बताया कि क्या घटित होने जा रहा है, तो उसने एक भविष्यवक्ता की भूमिका को किया था। समझे, और जब उनको आवश्यकता पड़ी कि वहाँ भेंट को अवश्य ही देना चाहिए, उसने एक खजांची के किरदार को किया। पतरस, नीचे जाओ और नदी में कांटे को डाल दो, और तुम्हें जो पहली मछली मिले उसके मुंह में एक सिक्का होगा, उन्हें भुगतान करने के लिए दे दो। देखें, अपने कर्तव्य का भुगतान करें। हमसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दे दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। वह दोनों ही था, पास्टर, भविष्यवक्ता, खजांची और डीकन, निश्चय ही वो था। तो फिर आप देखते हैं कि उसने क्या किया, जो यहाँ के इस भवन के लिए आपका उदाहरण होने दो, इस ब्रैनम टैबरनेकल में, कि हम एक ऐसा भवन बनाना चाहते हैं जिसमें उसका आदर किया जाए, हर एक चीज के साथ, हर कार्य स्थान, हर एक स्थान में, कि वहाँ कोई पीछे नहीं हटेगा। वहाँ पर सज्जनता और मधुरता और दयालुता होगी, लेकिन बस सीधे उस पद में से होते हुए हर एक मनुष्य उसके कार्य के पद पर होगा। देखा, यही वो तरीका है, इसी तरीके से वो इसे चाहता है। उसने कभी भी बुराई नहीं की। जब इसे कहने का समय आया, क्या बात क्या थी, उसने वही बताया। जब सज्जनता दिखाने का समय आया, तब उसने सज्जनता दिखाई। वह मधुर था, दयालु, समझदार था, लेकिन शक्ति और सारी चीजें बिल्कुल उस बिंदु तक उसके साथ थी, और उसने ऐसा उदाहरण के लिए किया। अब पवित्र आत्मा ने मुझे इसे अभी दिया, सो मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था कि वो पहले डीकन बना था, लेकिन वो था। देखा, उसने डीकन के रूप में काम किया। अब मैं ये कहता हूँ, यदि आपकी सभाएं 7:30 बजे से आरंभ होती है, यदि ये समय है तो अपनी कलीसिया को आधे घंटे पहले ही खोलें, 7 बजे खोल दें। पियानो वादक को ये बताएं, क्या आप पियानो वादक को भुगतान करते हैं? आप सब ऑर्गन बजाने वाले को भुगतान करते हैं? क्या उसे या पियानो वादक को भुगतान किया जाता है? क्या वह इसे स्वतंत्र इच्छा से करते हैं? उससे नम्रता से पूछे, यदि वो चाहता है कि इसके लिए भुगतान किया जाए तो उसे इसके लिए कुछ तो दे दें। उसे बताएं कि हम उसे सेवा से आधे घंटे पहले यहाँ पर चाहते हैं। और यदि वो कहता है कि मैं आधा घंटा पहले नहीं आ सकता या कुछ तो शिकायत, तो बस आप यहाँ आए और ऑर्गन के कुछ मधुर संगीत के टेप को चलाएं। आप समझे, और उसे चालू रखें। हर समय यहाँ नहीं होना चाहिए, अपना टेप तैयार रखें, समझे। एक डीकन, खजांची या जो हमेशा दरवाजे को खोलता है, दरबान, इसे वहाँ पर चालू रखें, टेप को चालू करें और इसे चलने दें जब लोग अंदर आ रहे होते हैं, समझे। क्योंकि यदि डीकन यहाँ नहीं है या कोई और है, खजांची या कोई और व्यक्ति, वो इसे करने के लिए यहाँ पर होना है, तो उन्हें आधे घंटे के लिए इसे चलाने दें, लेकिन बिल्कुल ठीक 7:30 बजे उस घंटी को इमारत के ऊपर बजने दें। देखा, आपके पास बाहर अभी भी घंटी है? जी हाँ, अच्छी बात है। घंटी को 7:30 बजे बजने दें, और इसका मतलब ये है कि हमें कलीसिया के ऊपर और नीचे नहीं घूमना है, और जॉन्स और सभी के साथ साथ हाथ मिलाते हुए। गीतों की अगुवाई करने वाला अपने काम पर हो, यदि वहाँ कोई गीतों की अगुवाई करने वाला नहीं है तो डीकन लोगों को इसे वहाँ पर देखना है कि या देखें कि वहाँ गीतों की अगुवाई को आरंभ करने के लिए कोई है या नहीं है। जब वो घंटी बजने लगती है, अपनी स्तुति के गीतों के संग्रह की किताब को खोलें, गीत संख्या फलाना और फलाना, समझे, और इसे बिल्कुल ठीक 7:30 बजे आरंभ होने दें। तो ठीक है, एक सभा के झुंड के गीत को होने दें, और फिर हो सकता है एक और सभा के झुंड का गीत हो, और उसके बाद किसी ने तो पहले ही प्रार्थना की विनती दी हो, यदि आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं तो पास्टर आकर, या कभी तो ठीक है, पास्टर को वहाँ नहीं होना चाहिए, वो गीतों की अगुवाई करने वाले को इसे करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि यह भाई कॉप्स है, देखें, वे जानते हैं कि क्या करना है, उसे कोई तो बताना है, या कोई तो खुद से प्रार्थना में अगुवाई करे। सभा के लोगों को प्रार्थना में खड़े होना है, देखो, बस खड़े हो जाएं और कोई तो प्रार्थना में अगुवाई करे। अब यदि आप नहीं देखते, अब हम विश्वास करते हैं कि हर किसी को परमेश्वर के भवन में आकर और प्रार्थना करनी चाहिए, यही वो प्रार्थना करने का स्थान है। लेकिन जब आप आराधना स्थल में होते हैं, अपने समय का संरक्षण करें, समझे। आप उन्हें वेदी के आसपास बुलाते हैं, आप देखेंगे कि 15-20 मिनट के लिए प्रार्थना करते हुए कोई तो व्यक्ति होगा और आपका सारा समय निकल जाता है, वहीं आपका समय निकल जाता है। देखो, आपको घर पर प्रार्थना करना है। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो पाखंडों की तरह खड़े होकर, और एक लंबे समय के लिए एक लंबी प्रार्थना न करें, और ऐसा कहना, वैसा या इत्यादि, और इस तरह से सब एक दिखावा करना, समझे। उसने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो अंदर की कोठरी में प्रवेश कर, गुप्त कोठरी, अपने पीछे दरवाजा बंद कर दे, अपने पिता से प्रार्थना कर जो गुप्त में देखता है, वह तुझे खुले तौर पर इनाम देगा। अब यही वो तरीका है गुप्त प्रार्थना करने का, यही है जो उसने करने के लिए कहा है। लेकिन जब आप कोई, जब वे अंदर आते हैं तो गीतों की अगुवाई करने वाला कहे तो ठीक है, पहले गाने के बाद फिर कोई तो प्रार्थना करे, जो कोई भी हो, बस एक छोटी सी प्रार्थना करे, ना ही खड़े होकर और सारे गवर्नर के लिए प्रार्थना करें और इसी तरह से आदि। यदि कोई प्रार्थना की विनती है तो इसे बताया जाए, इसे भेजें, उन्हें भेजा जाए, इसे लिखें, कहें, यहाँ पर आज की रात प्रार्थना के लिए हम बहन फलाना फलाना को याद करते हैं, भाई फलाना फलाना को जो अस्पताल में है, फलाना फलाना और फलाना फलाना और फलाना फलाना, उन्हें अपनी प्रार्थना में याद रखें। जब आप प्रार्थना करते हैं, भाई जॉन्स, क्या आप हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, आइए खड़े हो जाएं, समझे। इसे मंच पर रख दिया जाए, उन्हें बताएं, उन्हें इसकी आदत डालें। यदि आपके पास प्रार्थना की विनती है तो इसे यहाँ पर रख दें, यहाँ ऊपर, ना ही बोल कर दें। अब आपके पास कोई विनती है, क्या आप इसे बताएंगे? और फिर पहली चीज, कोई व्यक्ति उठता है और कहता है, परमेश्वर की महिमा हो, आप जानते हैं, ये उस तरह से आरंभ करते हैं, और पहली बात आप जानते हैं, यह एक आधे घंटे का समय है जिसे वे कभी कभी निर्धारित करते हैं। देखा, हम इस कलीसिया के लिए जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं, यह परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, इस कार्य के स्थान पर परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, समझे। इसका कारण मैं आज रात जो कह रहा हूँ, यह सब जो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, यह आपकी जिम्मेदारी है, इसका पालन करें। देखा, अब जब ऐसा ही कुछ तो कोई तो प्रार्थना में अगुवाई करने दो, और जब वे करते हैं तो अच्छी बात है, उन्हें प्रार्थना में अगुवाई करने दे, फिर बैठ जाएं। और यदि आपको कोई विशेष गीत मिला है, अब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं इसके साथ साथ नहीं जाऊंगा, और यदि कोई विशेष गीत को गाना चाहता है तो कलीसिया में इसकी घोषणा करें, उन्हें यह बताएं कि कोई भी विशेष गीत या जो कुछ भी आप गाना चाहते हैं, इससे पहले कलीसिया आरंभ हो, वे गीतों की अगुवाई करने वाले के पास आकर उसे दिखाएं, और इसे कहें, तो मुझे खेद है भाई, मैं चाहता हूं, जरूर मैं इसे करना पसंद करूंगा, लेकिन मेरे पास आज रात के लिए अपना विशेष गीत है, हो सके तो मुझे आप बताएं कि आप क्या फलाना रात को यहां पर होंगे, मैं आपके लिए इसे कार्यक्रम पर रखूंगा, देखो मैंने यहां कार्यक्रम को लिख कर रखा है। तो भाई कैप, या हमेशा जो कोई गीतों की अगुवाई करता है और एक गीतों की अगुवाई करने वाला होना है, चाहे वह कोई भी हो, और ना ही वे खड़े होकर कहें या इस तरह से बोलते रहें जैसे वे एक प्रचारक हों। देखो, उन्हें वहाँ ऊपर खड़े होकर और गीतों की अगुवाई करने दो, यही उनका काम है। प्रचार करना ये पास्टर का काम है। देखो, ना ही गीतों की अगुवाई करना, उसे गीतों की अगुवाई नहीं करना है। गीतों की अगुवाई करने वाले को गीतों की अगुवाई करना है, वो उत्तरदायी है और उसे चाहिए वहाँ कहीं तो उस कार्यस्थल में पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे ताजा होकर आए जब उसका समय आता है। उसे यहाँ तक मंच पर भी नहीं होना है जब ये सब कुछ चल रहा होता है, उसे वहाँ पीछे कार्यस्थल में रहने दो। देखो, या तो वहाँ पीछे जहाँ भी यह है, यहाँ इन इंटरकॉम से इसे अंदर सुनेगा। देखो कब इसका समय आता है, जब वो आखिरी गीत को सुनता है। यदि कोई विशेष गीत है, जैसे कि अकेले में एक विशेष गीत को गाना, दो जन या ऐसा ही कुछ, तो आपके लिए तीसरा गीत होता है। देखा, आपके पास दो सभा के गीत होने हैं, प्रार्थना, आपका प्रेमदान, यदि आप इसे लेने जा रहे हैं और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य के पद पर रहे, कहे तो ठीक है, जबकि हम इस अंतिम गीत को गा रहे हैं। अब यदि हशर करेंगे, उन्हें संध्या के प्रेम के दान के लिए आगे आने दें, समझे? और जब वे उस गीत को गाना खत्म करते हैं या हशर खड़े होते हैं, कहें तो ठीक है, अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं और प्रेमदान के लिए प्रार्थना करेंगे, हम यहाँ फलाना फलाना को याद करना चाहते हैं और फलाना को उसे पढ़ें, आप जानते हैं ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, तो ठीक है, हर कोई खड़ा हो जाए, भाई क्या आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे? फिर यह पूरा हो जाता है। उसके बाद जब वे इस दूसरे गीत को गा रहे होते हैं या आप जो भी गीत गाने जा रहे हैं, तो उसे गाएं। यदि आप पसंद करते हैं कि आप अपना प्रेम दान लें, तो यदि आप अपना प्रेम दान लेना चाहते हैं तो उसे ले लें, और मैं पहला गीत लूंगा, फिर आपका संध्या का प्रेम दान होगा, और फिर दूसरे गीत के साथ आगे जाएंगे, और फिर इसमें से होकर जाएं, फिर उसके बाद आपके आखिरी गीत को गाएं, तो वो आपका आखिरी गीत होना है, देखो, जिसमें वो पास्टर को बुलाना है। और जैसे ही वो अंतिम स्तुति का गीत गाया जाता है, ऑर्गन को आपके पास्टर के लिए अंदर आने के साथ बजाना आरंभ करें। आपका पास्टर बाहर चलकर आता है, देखो सब कुछ व्यवस्था में है, हर एक जन शांत है, कहने के लिए कुछ भी और नहीं है, हर एक डीकन अपने कर्तव्य के पथ पर है, पास्टर वहाँ पर खड़ा हुआ है। बाहर आकर अपने श्रोतागण को अभिवादन करता है, अपनी किताब को खोलकर और कहता है, आज रात हम बाइबल से पढ़ रहे हैं, देखो वो से करने के बाद हम बाइबल से पढ़ रहे हैं। और यदि आप कहें तो ये एक अच्छी बात है, परमेश्वर के वचन के आदर में अपने पैरों पर खड़े हो जाएं जब हम वचन को पढ़ते हैं। देखो उसके बाद पढ़ें, आज रात मैं भजन संहिता की पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, या जो कुछ भी है, या तो किसी और को इसे पढ़ने दें, गीतों की अगुवाई करने वाले को पढ़ने दें, या सहयोगी को, वहाँ कोई भी आपके साथ हो उसे पढ़ने दें, जो भी हो, जहाँ यदि आप इसे स्वयं पढ़ते हैं तो ये सबसे अच्छी बात है, यदि आप पढ़ सकते हैं तो। फिर इसे इस तरह से पढ़ें, उसके बाद अपना विषय लें, समझे? इतने सब में आप लगभग 30 मिनट निकाल लेते हैं, या ठीक तब लगभग 8 बज जाते हैं, और 8 बजे से लगभग 8:45 तक, कहीं तो लगभग 30 और 45 मिनट के बीच उस वचन को वहाँ पर रखें, जैसे पवित्र आत्मा आपको इसे देता है। देखो बिल्कुल उसी तरह से, बस इसे ठीक वहीं पर रखें जिस तरह से वो इसे करने के लिए कहता है, देखो अभिषेक के नीचे। उसके बाद अपनी वेदी की पुकार को करें, कहें यदि यहाँ इस कलीसिया में कोई भी मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना चाहता है, हम आपसे कहते हैं आपको ठीक अभी वेदी के पास आमंत्रित करते हुए केवल अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, समझे? और यदि कोई नहीं खड़ा होता है और कहें क्या यहाँ कोई ऐसा है जो बपतिस्मा के लिए उम्मीदवार है, जो पहले से ही पश्चाताप कर चुका है और पापों की क्षमा के लिए पानी में बपतिस्मा लेना चाहता है, यदि वे आना चाहते हैं तो हम अभी आपको अवसर देते हैं, या आप आएंगे जब ऑर्गन अब भी बज रहा है, आप समझे? कोई भी नहीं आता है तब कहें क्या यहाँ कोई है जो उसने पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को कभी नहीं पाया है और आज रात ऐसा करना चाहता है, हमसे चाहता हो हम आपके लिए प्रार्थना करें, ठीक है, हो सकता है कोई तो वहाँ पर आता है, तब दो या तीन जन उस पर हाथ को रखे, उनके लिए प्रार्थना करें, उन्हें सीधे पीछे उनमें से किसी एक कमरे में भेजे जहाँ कोई तो उनके साथ हो, उन्हें कहीं तो निर्देशित करे किस तरह से पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में लेना है। सभा के लोग सारे उनसे बहुत दूर होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति आकर वह मसीह को स्वीकार करना चाहता है और वेदी पर प्रार्थना करने के लिए खड़ा होता है, आप अपनी उन्हें प्रार्थना करने दो, और जब वे करते हैं तब कहते हैं अब आप अपना सिर झुकाएं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, और कहें क्या आप विश्वास करते हैं। यदि कोई भी छोटी सी चीज जो किसी भी तरह से जिससे सभा में देरी होती है, तो उन्हें प्रार्थना कक्ष में भेजें और उनके साथ वहाँ पर जाएं, या किसी को उनके साथ वहाँ पर भेजें और सभा के लोगों को आगे निकल जाने दें। देखो उसी तरह से देखें, आपको उन्हें तब उन्हें और नहीं रोके रखना है, देखा? और फिर जबकि इससे पहले कुछ क्षण में, तब यदि वे कहते हैं यदि कोई नहीं आता है, तो कहें क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज रात उनकी बीमारी के लिए तेल से अभिषेक करवाना पसंद करेगा, हम यहाँ बीमार के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहता हूँ भाई नवील। कोई कहता है ठीक है आप मुझे कार्यालय में मिले या किसी एक डीकन से मिले, वे से ले लेंगे। देखो और मेरे पास कुछ तो है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, तो ठीक है या डीकन में से एक आपको कार्यालय में मिलेगा और हम मैं आपको सभा के तुरंत बाद मिलूंगा। अब जैसा कि हम अब समाप्त करने के लिए खड़े होंगे, देखे और आपकी सारी बातों में लगभग एक घंटे और 45 मिनट से अधिक नहीं हुआ होगा। देखा देखे एक घंटा और 30 मिनट में आपकी सेवा समाप्त होती है। आपने छोटे से जोर से प्रहार को किया है, आपके इस तरह से करने से इसने ऐसा किया है, आपने कर दिया है और हर कोई संतुष्ट है और घर जाकर अच्छा महसूस कर रहा है, समझे। यदि आप नहीं करते हैं तब आप देखें, यदि आप इसे ऐसे ही जाने देते हैं, देखो आपका मतलब सही है, देखो लेकिन देखो आप जानते हैं मेरे लिए इस मंच में लगभग 33 वर्ष हो गए हैं, 33 वर्ष और संसार भर में आप इतने समय में निश्चित रूप से कुछ तो सीखते हैं। देखा यदि आप नहीं सीखते हैं तो बेहतर होगा कि आप छोड़ दें। तो फिर देखो मैं इसे देखता हूँ, अब यदि आप पूरी तरह से तब संतों के साथ व्यवहार कर रहे हैं भाई, यदि आप चाहें तो सारी रात रुक सकते हैं, लेकिन आप देखें आप उनके साथ सही सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें यहाँ पकड़ कर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ वे हैं, उन्हें आप पकड़ रहे हैं, आपको उनके कार्य क्षेत्र में काम करना है, समझे, और उन्हें यहाँ लाओ और फिर वचन को आने दो और फिर देखें वहाँ कुछ भी शिकायत नहीं की जा सकती है। यदि वहाँ कोई भी है जो आपसे इसके बारे में मिलना चाहता है तो ठीक है, अच्छी बात है, उन्हें इस तरह से सीधे कार्यालय में ले जाएं, लेकिन सभा के लोगों को रोक कर न रखें। फिर आप कहते हैं लोग उठकर और कहेंगे ठीक है मैं आपको बताता हूँ, आइए एक अच्छी गवाही की सभा को करें, समझे। मेरा इस पर कोई भी आलोचना करने का अर्थ नहीं है, मेरा अर्थ सिर्फ आपको सच्चाई को बताना है, मेरा अर्थ आपको सच्चाई को बताना है, समझे। मैंने और भी गवाही की सभा देखा है, वे कभी कभी अच्छी होने से अधिक नुकसान पहुंचाती है, देखो वे वास्तव में करती हैं। अब यदि किसी के पास बेदारी के समय में एक जबरदस्त गवाही होगी, आप जानते हैं आपकी एक बेदारी जारी होती है, आप जानते हैं एक सभा होती है और कोई तो उद्धार को पाता है और बस कुछ शब्द को कहना चाह रहा होता है, तो ठीक है परमेश्वर धन्य हो उसे उसके प्राण को हल्का करने दो, आपने समझा। और यदि वो चाहता है, यदि वो चाहता है इसे करूं, देखो तब बेदारी के समय में कहें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं प्रभु का धन्यवाद हो जो मेरे लिए उसने किया है, पिछले हफ्ते उसने मुझे बचा लिया है, परमेश्वर की महिमा के साथ मेरा हृदय जल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और बैठ जाएं, आमीन। ये ठीक है आगे बढ़े, देखो ये अच्छी बात है, लेकिन जब आप कहते हैं अब आगे आएं, अगला कौन है, अगला कौन है, अब हम कुछ शब्द को सुनेंगे, आइए हम कुछ शब्द की गवाही को सुने। और यदि आपने एक सभा को एक तरह से निर्धारित किया है उसके लिए एक विशेष रात को, देखो आप करने जा रहे हैं आज रात, अगले बुधवार की रात प्रार्थना सभा के बजाय यह एक गवाही की सभा होने जा रही है, हम चाहते हैं कि हर कोई वहां पर आए और यह गवाही की सभा होने जा रही है। और फिर जब वे गवाही देने के लिए उस स्थान पर आते हैं, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें और फिर कहें अब हमने घोषणा की है यह गवाही की रात है, इसलिए लोग गवाही को दें एक घंटा या 45 मिनट या 30 मिनट या जो भी है, और उसके बाद उसी तरह से आगे बढ़ें, समझे मेरा क्या अर्थ है। और मैं सोचता हूँ कि इससे आपके सभा के लोगों को सहायता मिलेगी, इससे कुल मिलाकर हर चीज को सहायता मिलेगी यदि आप इसे इस तरह से करते हैं। अब यह मुझे देर हो रही है इसलिए भाइयों यह मेरी सबसे अच्छी जानकारियां हैं, मैं समझता हूं कि आपके हृदय में क्या है, यह मेरी सबसे बेहतर जानकारियां हैं जो आपने सवालों को पूछा है। अब से लेकर आप जानते हैं, और यदि यह आपके दिमाग में आता है तो टेप पर आइए, यह पूछें, टेप को सुने, यदि ये डीकन के लिए है, खजांची या जो कुछ भी ये है, टेप को चलाया जाए, इसे वहाँ के सभा के लोगों के लिए चलाया जाए, यदि वे इसे सुनना चाहते हैं तो ठीक है। और परमेश्वर की इच्छा के बारे में यही मेरी सबसे बेहतर जानकारी है इस टैबरनेकल के लिए यहाँ जो 8वें और पेन स्ट्रीट में है, और इसी प्रकार से मैं आप भाइयों को आदेश दे रहा हूँ कि इसे पवित्र आत्मा के नेतृत्व में आगे बढ़ें, पूरी दयालुता और प्रेम के साथ लोगों के सामने अपने अनुग्रह को दिखाते हुए कि आप मसीह हैं। और मसीही का अर्थ एक बच्चा होना नहीं है जिसे कहीं भी यहाँ वहाँ धकेल दिया जाए, इसका अर्थ होता है कि एक पुरुष जो प्रेम से भरा है लेकिन फिर भी बस उतना ही परमेश्वर के लिए प्रेम से भरा है जैसे वो सभा के लोगों के लिए है, समझे मेरा क्या मतलब है। क्या कोई सवाल है टेप को यहाँ चलाने के बारे में, और मेरा कोई तो उस ओर इंतजार कर रहा है, वह किस समय पर वो वहाँ पर होना चाहिए, ठीक अभी वह खुद ही आ रहा है, तो ठीक है श्रीमान। अब मैं जानता हूं कि हम अभी बाहर जा रहे हैं, यदि कोई आगे बात नहीं है ठीक है, अब यदि नहीं है तो समाप्त कर दें। जी हाँ, हाँ भाई कॉलिंस, तो ठीक है भाइयों, मैं आज रात आपके साथ यहाँ होने की सराहना करता हूँ, और भाई नेविल और डीकनों के लिए और खजांची और संडे स्कूल के संचालक, आप सभी के लिए हम भरोसा करते हैं कि प्रभु अब आपकी सहायता करेगा परमेश्वर के राज्य के लिए इन व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए। जिस कारण से मैंने इसे कहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बच्चों से वयस्कों तक बढ़ चुके हैं। जब आप एक बालक थे तो आप बालक की तरह बात करते थे और आप एक बालक की तरह समझते थे, लेकिन अब आप एक पुरुष है, इसलिए परमेश्वर के भवन में वयस्कों की तरह व्यवहार करें। हमारा व्यवहार करना और हमारे कार्य के स्थानों का आदर करना और हर कार्य के स्थानों का आदर करना, हर एक दान जो प्रभु ने हमें दिया है उसे व्यवस्था में रखें और परमेश्वर का आदर करें हमारे दानों और हमारे कार्य के स्थानों के साथ। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको आज की रात के लिए धन्यवाद देते हैं इन पुरुषों को एक साथ एकत्र करने के लिए जो यहाँ के कार्य स्थानों में रखे गए हैं, ताकि प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएं, जिसे यहाँ इस कलीसिया जेफरसन विले में बढ़ाया जाता रहा है। परमेश्वर, आपका हाथ उन पर हो, आप उनकी सहायता करें और उन्हें आशीष दें, उन्हें पाए सभा और लोग समझ सकें और जाने यह परमेश्वर के राज्य को बेहतर रूप देने के लिए है, जिससे कि हम समझदार मनुष्य बन सके और परमेश्वर की आत्मा को जाने और जाने की क्या करना है। इसे प्रदान करें पिता, आपके आशीष से सभा को समाप्ति दीजिए और पवित्र आत्मा हम पर निगरानी रखे और हमारा मार्गदर्शन करे और हमारी रक्षा करे और होने पाए हम हमेशा ही कर्तव्य के पद पर विश्वास योग्य पाए जाएं। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।